हो जाए राग।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
अशोक नाम का जो बॉम्बे से माता जी के साथ आया है उसको मंच के पीछे आना चाहिए। अशोक जी जो माता जी से बॉम्बे से आए हैं उनको पीछे पहुंचना चाहिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
बॉम्बे से भालोटिया माई के साथ में जो अशोक जी आए हैं उनको शीघ्रता से पीछे आना चाहिए। बॉम्बे से भालोटिया माजी के साथ में जो भाई अशोक आया है उसको पीछे पहुंचना चाहिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
राम जो बॉम्बे से भालोटिया माई आई है उसके साथ में अशोक भाई आया है उसको मंच के पीछे आना चाहिए। बॉम्बे से भालोटिया माई के साथ में अशोक नाम का जो बालक आया है उसको मंच के पीछे पहुंचना चाहिए। राम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण
गोविंद हरे
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं राजा परीक्षित ने शाद्यदेव मनु के चरित्र के विषय में उत्पत्ति के विषय में पूछा। सुखदेव जी महाराज उस समय ब्रह्मवादियों की सभा में ये बात कहने लगे। देखो ये ब्रह्मवादी नाम दिया यहां। ब्रह्मवादियों की सभा में राजाओं के वर्णन की क्या बात है, तो राजा लोग भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने के अधिकारी हैं, सब है, मनुष्य मात्र है। इसलिए यहां ब्रह्मवादियों की सभा में जो कुछ वहां कहा जाएगा वो ब्रह्मवादियों का ही नाम लिया जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो जितने भी जगत के चर अचर प्राणी पैदा होते हैं, जितनी जातियां पैदा होती हैं, जितना जो जो अलग अलग शरीर जीवों का दिखाई देता है, उसका मूल आधार भगवान है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि पैदा हुए, मरीचि से कश्यप जी पैदा हुए और कश्यप जी के अदिति से सूर्य पैदा हुए विवस्वान, छठे स्कंद में साफ बताया। उस सूर्य के श्राद्ध देव मनु हुए। पहले मनु के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर एक यज्ञ किया। अब देखो यज्ञ में उनके मन में क्या था कि हमारे लड़का होना चाहिए, और बोले क्या कि हमारे संतान होनी चाहिए। संतान तो लड़का और लड़की दोनों ही होते हैं। तो उन्होंने देखा कोई नहीं हो रहा था, अपने तो लड़का अपने संतान होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, संतान के लिए यज्ञ करेंगे। अब यज्ञ करते समय में लोग भूल करते हैं कि अपना एक संकल्प होता है, उस संकल्प को डिगाना नहीं चाहिए। तो राजा के मन में था कि लड़का होना चाहिए, और रानी के मन में ये थे कि मैं लड़की होनी चाहिए, और संकल्प ले रहे हैं साहब हमारे संतान होनी चाहिए। रानी ने जाकर ब्राह्मण से कह दिया कि देखो मेरी लड़की होनी चाहिए। अब वहां पर आहुति दी जाने लगी और उस हविष्य से फिर लड़की पैदा हो गई। उसका नाम था इला। राजा ने जाकर के अपने गुरुजी से कहा, वशिष्ठ जी से, कि महाराज आप जैसे यज्ञ करने वाले हमारे भीतर के अंदर छिपी हुई बात नहीं जानते। मेरे अंदर छिपी हुई वासना थी लड़के की, और आपने उठा करके उसको लड़की बना दिया। लड़की कैसे बनी? हालांकि हमने संकल्प लिया था संतान के लिए, पर और भी गहराई से एक वास भीतर की रुचि होती है। रुचि तो हमारे लड़के की थी ना। वशिष्ठ जी ने अपने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मण ने कह दिया महाराज रानी ने लड़की के लिए कहा। तो राजा ने कहा कि देखो अब लड़की होगी, इसको लड़का बनाओ, इसी शरीर से बनाओ। तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया और वो लड़की से लड़का हो गया। ध्यान देना हो, यज्ञ वगैरह से प्रबल चीज क्या है? क्रियात्मक अनुष्ठानों से बड़ी चीज है प्रकृति का विधान। अब वो लड़का बना हुआ घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए गया, इलावर्त खंड में चला गया। इलावर्त खंड में तो वहां पुरुष नाम की कोई चीज रहती नहीं, सब स्त्री हो जाते हैं। घोड़े पर बैठा तो घोड़ा घोड़ी हो गया। उसके साथ में जितने लोग गए थे वो पुरुष गए थे, सब वो स्त्री हो गए। राजा ने कहा महाराज ऐसी क्या बात है? वहां इलावर्त खंड में ऐसा क्यों कि कोई भी पुरुष होता है वो स्त्री क्यों होता है? कि वहां भगवान शंकर का वरदान है। देखो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं तो सब ब्रह्मज्ञानी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और दूसरी जगह कहीं भगवान शंकर जाते हैं तो ज्ञानियों को कौन छोड़ने वाले? सब ज्ञानी लोग दूसरे आकर के उनको ज्ञान के लिए बातें करते। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप हमारे लिए तो कोई समय नहीं देते, परिवार को भी तो समय देना चाहिए। आप एक सीमा बांध दीजिए कि यहां कोई नहीं आ सकता। भगवान शंकर ने कहा भी मना तो कैसे करूं किसी को मेरे पास आने में, क्योंकि मैं एक तेरा तो हूं नहीं, हूं तो सभी का हूं। तो कहा कि कुछ न कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा चलो इलावर्त खंड में तुम भी रहो हम भी रहे, कोई भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो वो सुद्युम्न था, वो वापिस लड़की हो गया। देखो उसका प्रारब्ध है। लड़की होकर के वो घूमने लगा तो इलावर्त की सीमा को पार कर गया। वहां पर बुध नाम का लड़का रहता था। बुध ये चंद्रमा का लड़का था। अब बुध का और इला का विवाह हो गया और फिर उनसे पुरुरवा पैदा हो गए। पुरुरवा, इस पुरुरवा से देख लेना आप 13वें अध्याय में वंश चलेगा। ये चंद्रवंश है, बुध है ना, ये चंद्रवंश का पुत्र है, चंद्रमा का ही पुत्र है, चंद्रवंश क्या बताए। तो अब जो है उधर उसके पिताजी ने गुरुजी से कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज लड़की होती कम से कम हमारे यहाँ रहती करती है, वो तो लड़की से वापस लड़का बनाया, लड़का से वापस लड़की हो गई, अब वापस उसको लड़का बना सकते हो गया। तो अब लड़का लड़की के चक्कर में ही मनु महाराज की उम्र निकलने लगी। और उधर वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ करके शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने कहा कि एक महीने लड़की रहेगा, एक महीना लड़का रहेगा। फिर सुद्युम्न ने विचार किया कि एक महीना मेरा लड़का में ट्रांसफर होता हूँ, एक महीने में लड़की में ट्रांसफर होता हूँ, इस ट्रांसफर बाजी में उम्र चली जाएगी, भगवान का भजन कब करेंगे। तो वो लड़का और लड़की दोनों भाव से रहित होकर वो तो भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अपना जो कुछ राज्य वगैरह था वो अपने बेटा पुरुरवा को दे गया। ये एक अध्याय, पहला अध्याय ये चंद्रवंश का है। अब देखो चंद्रवंश का अध्याय है कि ये श्री गणेश यहाँ क्यों किया भाई। श्री गणेश इसलिए किया कि परीक्षित भी इसी वंश के हैं और हमारे सुखदेव जी महाराज भी इसी वंश के, दोनों चंद्रवंश के हैं। अब आगे कहते हैं कि मनु के फिर उसने यमुना जी के किनारे जाकर यज्ञ किए तो 10 लड़का हुए। 10 लड़कों में एक लड़का था पिशद्र, गायों की सेवा में रहता था। रात्रि के समय में एक दिन बाघ आ गया, गाय जोर से क्रंदन करने लगी तो उसने निशाना लगा करके तलवार को फेंका, दिखता तो था नहीं। तलवार के फेंकने से वो जो आया था बाघ, उस बाघ का कान तो कट गया लेकिन गाय की गर्दन कट गई। दूसरे दिन उसने अपने हाथ से किया हुआ पाप था वो पाप ले जाकर गुरुजी को अपने मुंह से बोल दिया। देखो ये बता, यही खास बातें हैं दशम स्कंद ये नवम स्कंद में, अपने मुख से अपना पाप प्रकट किया कि महाराज देखो मेरे से गलती हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तूने अपने मुख से अपनी गलती प्रकट कर दी, जाओ भगवान का भजन करो, कोई उपाय नहीं है। ऐसे वो राजा थे। यही अशर्याती नाम का राजा, उसके एक सुकन्या थी, शर्याती इसी का ही भाई, इस प्रसद्र का भाई। उसके सुकन्या नाम की एक कन्या थी, नाम थी सुकन्या, सुकन्या कन्या थी। च्यवन ऋषि के आश्रम में गए, बच्ची थी, एक तिनका लिया और एक चमकने वाले जुगनू के समान कोई प्राणी की कल्पना करके उसमें वो छेड़खानी करने लगी। तो वो जो है और कुछ नहीं, च्यवन ऋषि की आंख थी, आंख, उसने जुगनू समझा उसको, क्योंकि सारे शरीर पर तो दीमक आ गई। अब उस आंख के अंदर वो तिनका लगाया तो खून आने लगा, तो सब लोगों के पेट में तकलीफ हो गई। तो राजा ने कहा क्या बात है, हम सब के पेट में तकलीफ हो गई, क्या कारण है। तो उस बच्ची ने कह दिया कि कारण यही है कि साहब और तो कुछ पता नहीं, किसी ने अपराध किया नहीं, मेरे से अपराध हुआ, एक जुगनू है, जुगनू उसके मैंने तिनके की लगाई तो खून आ गया। अरे जुगनू नहीं है तो ऋषि है। अब ध्यान से सुनना, पिता ने अपनी लड़की को उस च्यवन ऋषि की सेवा में रख दिया कि महाराज अब ये आपकी पत्नी है। लड़के को, लड़की को बोल दिया बेटा ये तेरे पति है। अब कितने बुढ़े वो पति, और ये थी जवान, ये तो पोती पड़पोती के समान थी। परंतु पिता ने दे दिया बस ठीक है, पतिव्रता होकर के सेवा करनी है। सेवा करते करते एक बार अश्विनी कुमार वहां आए। अश्विनी कुमार आए तो च्यवन ऋषि ने कहा कि अश्विनी कुमार जी मेरा शरीर देखो तपस्या करने से उम्र से गलित पलित हो गया, ढीला ढला मुंह लटक गया, यो मेरा शरीर बढ़िया बना दो, युवक जैसा बना दो। तो अश्विनी कुमार ने वहां अमृत के कुएं के अंदर, दोनों थे अश्विनी कुमार, कुएं के अंदर वे अपने च्यवन ऋषि को ले गए। तीनों ने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर निकले तो एक जैसे थे तीनों। उधर जो है हमारे सुकन्या जी ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि महाराज हमारा पति कौन सा है वो बता दीजिए, मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे रंग नहीं चाहिए, मुझे सौंदर्य नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पति चाहिए। उसकी ऐसी जो है पति निष्ठा देखी, अश्विनी कुमारों ने कह दिया कि बेटा ये है तुम्हारे पति। तो अपने पति को पाकर खुश हो गई। इतने में ही उसके पिताजी आ गए। पिताजी आ गए और वो तो भड़क गए। पिताजी को क्या पता। पिताजी ने कहा कि अरे मैंने एक बूढ़े ऋषि के साथ तेरा विवाह किया था, बेचारे उसको तो जाने तूने मार दिया, निकाल दिया। अरे जवान छोकरे को कहां से ले आए तू, मेरी बेटी होकर के मेरा काला मुंह करती है, ऐसे करके मेरा अपमान करती है, तू कौन है ये। वो हंसी कि मुझे पूछने से पहले आप इन्हीं से ही पूछ लेना कि कौन हो तुम। तो फिर उस समय जो है उन्होंने चवन ऋषि ने सब अपनी कथा सुनाई। तो वो पिताजी बड़े खुश हो गए, सुकन्या के पिताजी। फिर पिताजी ने कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। तो चवन ऋषि ने कहा कि यज्ञ तो हम करा देंगे, पर वहां अश्विनी कुमारों को आपको यज्ञ में हिस्सा देना पड़ेगा और ये इंद्र मानेगा नहीं। तो कहा कि मैं तो महाराज यज्ञ में हिस्सा दे दूंगा, अब इंद्र नहीं मानता, वो आप जानो। तो ठीक है, इंद्र से मैं बात करूंगा। इधर क्या हुआ, वहां आहुतियां दी जाने लगी। तो इंद्र वहां आ गया। इंद्र को पता चला कि इस प्रकार से अश्विनी कुमारों को यहां हिस्सा मिलने वाला है। तो इंद्र अपने हाथ में वज्र लेकर के आया और उसने कहा मैं राजा को मारूंगा, ये यज्ञ क्यों कराता है, अश्विनी कुमारों को क्यों बुलाता है। अपने हाथ में यूं वज्र लिया, यूं करके वो फेंकने लगा। इतने में ही चवन ऋषि ने एक बाण लगाया, शक्ति लगाई, उसका जो है ये हाथ यूं ही बंद हो गया, ये हाथ यूं ही रह गया, जैसे कोई ताला लग जाए ऐसे हो गया यार। ये अब हाथ यूं होवे ही नहीं, बस इसका मूवमेंट यहां से बंद हो गया। यूं यूं करता रहा, कुछ कर ले क्या करेगा। तब इंद्र ने क्षमा मांगी और कहा कि महाराज अश्विनी कुमारों को यज्ञ का हिस्सा दे देंगे, आप मेरा ये यहां से बंधन खोल दीजिए। तो फिर वो बंधन खोल दिया और अश्विनी कुमारों को हिस्सा मिलने लगा। उन्हीं शरियाती के तीन बेटा हुए, उनमें रेवत नाम का लड़का, रेवत से आनर्तवार, आनर्त से रेवत हुआ और रेवत से कुकुदमी हुई, कुकुदमी से रेवती नाम की कन्या हुई। अब देखो उस पिता ने सोचा कि मेरी कन्या का विवाह सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ करूंगा। तब कहा कि क्या करें, तो अपने ब्रह्मा जी से जाकर पूछ के आए। अब इस शरीर से तो ब्रह्मा जी के लोक में कोई जा नहीं सकता, देवताओं के लोक में भी नहीं जा सकता, पर ऐसी तपस्या की, ऐसी शक्ति प्राप्त की, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरे यहां आने में और मेरे यहां से जाने में तुमको बहुत समय लग जाएगा, लग गया, 27 चतुर्युगी बीत गई, चलो अब जाकर के तुम बलराम जी के साथ में तुम्हारी लड़की का विवाह कर दो। तब वो आया और बलराम जी के साथ विवाह कर दिया और स्वयं बद्री नारायण जाकर तपस्या करने लगा। उसी श्राद्ध देव मनु के नभक नाम का लड़का हुआ, उस नभक के नाभाग हुआ। नाभाग विद्या अध्ययन करता था, ध्यान देना पीछे से देखो, एक में पतिव्रता का धर्म बताया है और एक में सत्यवादिता का धर्म बताया है। अब इसमें बताते हैं कि ये कैसा निरीह और ये भी कितना सत्यवादी, कितना निर्लोभ है, निर्लोभ। तो नाभाग विद्या अध्ययन करने गया तो पीछे से सारी संपत्तियों का भाइयों ने बंटवारा किया। तो जब वो विद्या अध्ययन करके आया, पिताजी माताजी से मिला तो कहा कि बेटा तुमको तो संपत्ति में कुछ नहीं मिला, तुमको तो हम दोनों मिले। अरे महाराज आप मिल गए, आपसे बढ़कर क्या संपत्ति होती है संसार में, माता पिता से बढ़कर क्या संपत्ति होगी। रोज उठते ही माता के चरणों में प्रणाम, पिता के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य जिसको मिलता है ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। बड़ी कृपा हो गई, धन संपत्ति तो नहीं मिली, कि कोई बात नहीं धन संपत्ति नहीं मिली, आप मिल गए, हमको आपसे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो पिता खुश हो गए, देखो हम लोग माता पिता का आदर करते नहीं, उनके चित्त में जब प्रसन्नता होती है और वो जो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद से बहुत काम होता है। जो काम हमारे परिश्रम से नहीं होगा वो माँ के आशीर्वाद से होता है। माँ आशीर्वाद देती है बहुत, उससे बहुत लाभ होता है। मातृ पद पर है, वो पद का आशीर्वाद है, वो माँ पद पर है। वो लोग हमारी माँ तो चिड़े घड़ी भी रुकाई आशीर्वाद लागी, वो भाई आप चाहे कुछ भी बोलो वो चिड़ती हो स्वभाव होगा, लेकिन माँ के पद पर है ना वो, इसलिए उसका आशीर्वाद आपके लिए तो उसी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा काम आएगा। तो माता पिता ने आशीर्वाद दिया उसको, बेटा तेरी ऐसी भक्ति हमने देखी तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। वो लोग ब्राह्मण लोग वहां यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में वो छठे दिन की विधि का ज्ञान नहीं रखते, तुम जाकर बता दो वो तुमको बहुत धन देंगे। तो वो गया, वो नाभाग छठे दिन की विद्या बताई, ब्राह्मण खुश हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि हमको तो यज्ञ करना था और हमें कुछ लेना देना नहीं, ये सारा धन तुम्हारा है। तो वो सब धन वो लेने लगा। तो अब देखो वहां कोई कहेगा कि ब्राह्मणों का धन कैसे ले, ब्राह्मण नहीं वो राजर्षियों का यज्ञ था। राजर्षि लोग जो है वो यज्ञ के यजमान थे और ब्राह्मण लोग वहां पर विधि बता, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे। तो ब्राह्मणों ने वो लिया ही नहीं, बहुत धन पड़ा था। तो अब वो जाकर के धन लेने लगा तो इतने में शंकर जी आए। शंकर जी आकर के फटकार लगे, कौन हो तुम, कैसे धन ले जाते हो, यज्ञ शेष रुद्र का होता है, तुम्हारे पिता से पूछ के आओ इस धन पर किसका अधिकार है। तुम्हारा पिता कह देगा तो तुम्हारा, और तुम्हारा पिता यदि मेरा बताएगा तो धन मेरा है। उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे तो पिताजी ने कहा इसलिए आया हूं, फिर भी आपकी आज्ञा है, पिताजी से पूछ के आता हूं। पिताजी से कहा, पिताजी एक गौरवर्ण वाले कोई पुरुष आए, बड़ी भव्य आकृति और आंखों में बड़ा प्रेम, लेकिन ऐसे डांटते हैं जैसे कोई पिता बहुत प्रेम में बच्चे को डांटते हो, प्रेम से डांटते हो। ऐसे डांटते हुए कहा, ये धन तो मेरा है। बड़ा सुंदर उनका रूप, गले में उनके सांप और मृगचर्म पहन रखा, हाथ में त्रिशूल, और प्रेम से वो आंख निकाल निकाल के बोल रहे थे। मेरे मन में भय पैदा नहीं हुआ, मैं समझ गया कि प्रेम तो आंखों में है ही। तो वो धन किसका, अरे बेटा तेरा तो भाग्य खुल गया, वो तो साक्षात भगवान शिव है, शिव को अर्पित कर दे। जाकर कहा कि महाराज आप तो साक्षात भगवान हो, ये सब धन आपका है, आप जैसे धन हमको मिल गए, हमें इस धन से क्या लेना देना। तो शिव जी खुश हो गए, वाह बेटा वाह, आओ आओ तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो। ब्रह्म ज्ञान उसी के हृदय में ठहरता है जिसके अंदर लोभ नहीं होता, जिसके अंदर काम नहीं होता, जिसमें क्रोध नहीं होता, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान ठहरता है। नहीं तो फूटा हुआ पात्र हो, उसमें आप चाहे कितनी बढ़िया चीजें डाल दो, घी डाल दो, शहद डाल दो, जल डाल दो, दूध डाल दो, जितना द्रव पदार्थ है सब बह जाएगा, वो पदार्थ फूटा हुआ है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की कितनी बातें सुन लो, यदि अंतःकरण फूटा हुआ है सब बह जाएगा, कोई मतलब नहीं। आओ बेटा हम तुमको सनातन ब्रह्म का उपदेश देते हैं। इतना बढ़िया उपदेश दिया और फिर वो धन भी दे दिया। वो धन को ला करके अपने पिता के पास आए, उस नाभाग के अम्बरीश जैसा भक्त पैदा हुआ। अम्बरीश के विषय में तो मालूम ही होगा ना तुमको परीक्षित, दुर्वासा का शाप भी उसके सामने कांपने लग गया, दुर्वासा का शाप उसके पास जा नहीं सका। कि महाराज दुर्वासा ऋषि का शाप, ब्राह्मण का शाप और फिर दुर्वासा का शाप, वो शाप तो महाराज किसी के द्वारा रोके रुकता नहीं है, बात क्या थी। कहने लगे देखो अम्बरीश बहुत बड़े राजा, सात द्वीप वाली पृथ्वी का अतुलित वैभव प्राप्त करने के पश्चात भी बड़े सावधानी से भजन करते थे वो। देखो जिसके पास संसार की जितनी ज्यादा अनुकूलता है, भगवान की प्राप्ति में उतना ही उसके लिए सावधान होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है उसको। तो उन्होंने विचार किया कि कहीं मैं अभिमान में फंस गया तो नरक में जाना पड़ेगा, बहुत सावधानी से भजन करते रहे। इस मन की, भगवान ने मन क्यों दिया है? मन दिया है अपने चरणों में प्रेम करने के लिए। भगवान ने नेत्र क्यों दिए हैं? कि मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप का अथवा सत्संग में जाकर श्रेष्ठ महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। ये हाथ क्यों दिया है? कि मंदिर में जाकर भगवान के सेवा करने के लिए और घर में माँ बाप स्त्री पुत्र आदि इनकी सेवा करने के लिए हाथ दिए हैं। कान क्यों दिया है? कान दिया है भगवान की कथा सुनने के लिए और संसार में जो गुणवान पुरुष है उनके गुण सुनने के लिए। ये मन में काम क्यों दिया है? इच्छा क्यों दी है? ये इच्छा दी है भगवान की दासता की इच्छा करने के लिए। हे भगवान, मैं आपका दास बना रहूं, दासता के लिए इच्छा दी है। ऐसा विचार करके वे जो भी कोई यज्ञ करते उसका फल भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करते थे। बड़ी बड़ी सिद्धियां उनको मिल गई पर उन्होंने सिद्धियों का भी आदर नहीं किया। मुकुंदम हरि हृदि पश्यत, भगवान मुकुंद को, मुकुंद माने मुक्ति को देने वाले भगवान, तो उनको देने वाले भगवान मुकुंद उनको हृदय में देखते रहते थे। राज्य स्त्री पुत्र आदि सब स्वप्न के समान झूठे हैं, ऐसा हृदय में ज्ञान दृष्टि से देखा करते थे। एक बार उन्होंने कार्तिक महीने में लंबा चौड़ा व्रत किया, पैसे तो किया तो था, सामवत्सर व्रत किया था, द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत। कभी कभी भाई ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि आज व्रत है कि कल व्रत है, कि वो लोगों के मन में तो ये दो क्यों होता है। देखो दशमी विद्या एकादशी आती है, माने सूर्योदय के समय में दशमी है और बाद में एकादशी आती हो, उस दिन तो करते हैं स्मार्त लोग व्रत। और सूर्योदय के समय में एकादशी हो और बाद में द्वादशी आ जाती हो, तो सूर्योदय के समय में तिथि आ गई उस दिन करते हैं वैष्णव लोग। ये दशमी विद्या एकादशी व्रत, एक द्वादश, एक जो है द्वादशी विद्या एकादशी व्रत, ये दो व्रत कब आते हैं। ऐसे जितने व्रत हैं सब में यही बात है। जन्माष्टमी के व्रत में भी यही बात है, शिवरात्रि के व्रत में भी, ये सब घड़ियों में देखा जाता है। अस्तु, तो वे द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत एक साल से कर रहे थे, तो कार्तिक के दिन आए ना, उस समय की बात है, वो यमुना नदी के किनारे थे और उस समय तीन रात्रि तक भूखे प्यासे रह करके खूब दान पुण्य किया। इतने में दुर्वासा आ गए, कहने लगे राजन हमने भी एकादशी की, हम भी भोजन करेंगे और तुम्हारे यही भोजन करेंगे, बड़ी कृपा है महाराज। अब दुर्वासा जी गए स्नान करने के लिए, वहां पर मंत्र बोलते बोलते विलंब करने लगे, तब वो द्वादशी की घड़ी बीत रही थी। अब पारणा जो होती है वो द्वादशी की घड़ी में ही वैष्णव लोग करते हैं। देखो इसमें भी एक अंतरंग रहस्य है कि ये दस इंद्रियां हैं, इनको जीतने के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो दशमी विद्या एकादशी व्रत करते हैं। वैष्णव लोग हैं वो ग्यारह की बात करते हैं, द्वादशी प्रदान द्वादशी के दिन वो अपना पारायण इसलिए करते हैं कि भगवान विष्णु के जो है कलाओं में बारह कलाएं मुख्य मानी जाती, बारह राशियों पर सूर्य भगवान रहते हैं। और भी कई कारणों में ग्यारह ग्यारह मन सहित ग्यारह इंद्रियों को जीतना है वो वैष्णवों के लिए आता है, और मन को अलग रखकर केवल इंद्रियों को जीतना होता है, ये जो है स्मार्थों की बात आती है। तो कोई बात नहीं, अपने अपने सिद्धांत की बात है। तो हमारे दुर्वासा ऋषि द्वादशी घड़ी को व्यतीत करने में लग गए, उनको पता नहीं व्यतीत हो रहा है, वो उसमें मस्त रहेंगे बेचारे। इतने राजा ने देखा कि अरे द्वादशी की घड़ी बीत जाएगी, फिर प्रदोष व्रत आ जाएगा तेरस के दिन, और अभी तक वो आए नहीं ऋषि, क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतने दिन से व्रत कर रहा हूं। तो कहा कि आप गंगा जल और तुलसी ले लीजिए। तो जल और तुलसी उन्होंने ले ली। इतने में ही दुर्वासा ऋषि आए, अरे हमारे आने से पहले तुमने कैसे व्रत भंग कर लिया, जल भी पिया तो क्यों पिया। बहुत डांट डपट करने लगे, एक नहीं सुनी और अपने जटा में से एक बाल उखाड़ा और एक आग का पुंज बनाया जिसको कृत्या बोलते हैं, राजा की तरफ छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने भक्तों की सेवा में रखते हैं, जाओ भी तुम भक्तों की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, प्रकट होकर के वो कृत्या को तो समाप्त कर ही दिया। दुर्वासा ऋषि की तरफ वो सुदर्शन चक्र दौड़ा। दुर्वासा ऋषि भागते भागते कभी ब्रह्मा जी के वहां गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं तो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, उपाय बता सकता हूं। भगवान विष्णु के वहां चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु के बैकुंठ में गए और कहने लगे, महाराज अजानता थे परमानुभावम, आपके मैं प्रभाव को जानता नहीं था, गलती हो गई, अब आप जो है मुझे क्षमा करेंगे। आपके नाम के उच्चारण करने मात्र से नरक में जाने वाला प्राणी भी आपके चरणों में आ पड़ता है। महाराज मुझे छुड़ाओ, इस सुदर्शन चक्र से छुड़ाओ। भगवान ने सिर हिला दिया। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं भी विवश हूँ, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जना प्रिय। बहुत पराधीन हूँ, आप मुझे क्या समझते हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र समझते हो? जहाँ मेरी स्वतंत्रता है वहां तो स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं मेरी पराधीनता भी है। मैं भक्तों के सामने पराधीन रहता हूँ, संतों ने मेरा हृदय जकड़ रखा है प्रेम के कारण से, इसीलिए मैं भक्तों का प्रिय हूँ। मैं अपने आप में स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझे लक्ष्मी जी भी इतनी प्यारी नहीं लगती है जितने मुझे भक्त लोग प्यारे लगते हैं। आप विचार करो दुर्वासा जी, ये भक्त और हम दोनों में से देखा जाए तो जितना त्याग भक्त करता है उतना हम थोड़े ही करते हैं। भक्त है वो अपने माँ बाप स्त्री पुत्र मकान दुकान सबसे अपना प्रेम छोड़ करके मुझमें वो प्रेम करता है। अब बताओ ऐसे भक्तों को यदि मैं न सुनूं, ऐसे भक्तों को न स्वीकार करूं, तो बताओ फिर मेरी तो भक्ति बंद हो जाएगी। ऐसे भक्त मुझे वैसे ही वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री के पति वश में हो जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्री के वो बात माननी पड़ती है। मेरे भक्तों की क्या बात बताऊं दुर्वासा जी, उनको मैं सालों के सारि सामिप्य सारूप्य एकत्व ये मुक्ति देने लगूं, वो लेना नहीं चाहते हैं। एक बात बताता हूँ, हे दुर्वासा जी, मैं अव्यक्त रहता हूँ, छिपा रहता हूँ, परंतु मेरे हृदय की पहचान करनी हो तो संतों के पास चले जाओ, और संतों के हृदय की बात मालूम करनी हो तो मेरे पास आ जाओ। संतों का हृदय मैं हूँ, मेरे हृदय संत है। मैं संतों के अलावा किसी को नहीं जानता, क्योंकि संत मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। आपके पास तपोबल था ना, ये तपस्या है और शास्त्रीय विद्या है, ये वास्तव में लाभ करने वाली होते हुए भी यदि इनका कोई दुरुपयोग करता है तो इससे नुकसान भी बहुत होता है। जैसे रुपया है, रुपया एक शक्ति है, परंतु इसको दीन दुखी की सेवा में लगाए, माता पिता और पुत्र स्त्री परिवार इनके पालन में लगाए, दीन दुखी की सेवा में लगाए, तब तो इसका सदुपयोग है। और इसी रुपए के द्वारा वो जुआ खेले और कुछ करे, जितने पाप कर्म वो करे, तो भाई इसके लिए बड़ा भारी ये अभिशाप भी है। तो तुम्हारे पास जो विद्या है, तप है, उसका तुमने बहुत दुरुपयोग किया है। अभी भी तुम मेरे यहां आ गए, इसलिए कहता हूं तुम उस नाभाग पुत्र अम्बरीश की शरण में चले जाओ, तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुमको शांति मिलेगी। भगवान ने उपाय बता दिया। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए, अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा, महाराज उल्टी बात, ये उल्टी गंगा कहां से बहने लगी? हिमालय से गंगा बहती है कि समुद्र से हिमालय की ओर गंगा बहती है? महाराज मैं आपके चरणों में कि आप मेरे चरणों में? क्या भाई इसे पिंड छुड़ाओ, मेरा सुदर्शन चक्र से पिंड छुड़ाओ। अब दुर्वासा ऋषि ने सुदर्शन चक्र से बड़ी प्रार्थना की है। देखो किसी पर भयंकर संकट आता हो ना, भगवान न करे भाई किसी पर आए, हृदय से प्रार्थना है। और यदि कोई भयंकर ही संकट आ गया हो तो ये जो श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद से तीसरे श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक ये 9 श्लोक है, ये 9 श्लोक सुदर्शन चक्र से प्रार्थना के श्लोक है। इन श्लोकों से यदि सुदर्शन चक्र की पूजा की जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए, चतुर्भुज भगवान हो, और चतुर्भुज भगवान में चक्र जरूर होना चाहिए, शंख चक्र कदा पद्म चारों आयुध सहित हो, ऐसे भगवान विष्णु की पूजा करके आर्त भाव से 9 श्लोकों का पाठ करे तो सुना है उसका संकट दूर निश्चित रूप से होता है, सुना है। अस्तु। अम्बरीश बोलते हैं कि हे सुदर्शन, आप ही अग्नि हो, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही भगवान के परम प्रिय शस्त्र हो, आप लोकपाल हो, आप में परम पौरुष है, आप ही को लेकर के भगवान संसार की रक्षा करते हैं, आप मन से भी बड़े वेगशाली हो, आपका तेज बड़ा धर्मयुक्त है, और आपका जो प्रकाश है उस प्रकाश को महापुरुषों ने अपने हृदय में धारण किया है। हे सुदर्शन चक्र जी, आप इस ब्राह्मण का संकट दूर कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया हो और मैंने भगवान की आराधना में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं किया हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा करते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया एकदम। जब सुदर्शन चक्र शांत हो गया तो उनको दुर्वासा जी को ठंडी सांस आने लगी, और अब दुर्वासा ऋषि बड़े मुक्त कंठ से कहने लगे, अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्य में, आज मैंने भगवान के भक्तों का महात्म्य देखा है, कितना मैंने दुर्वासा कहते हैं कितना मैंने अम्बरीश का अपमान किया है, लेकिन इसने मेरा मंगल ही मंगल चाहा। अहो संतों के समान कौन ऐसा कठोर काम कर सकता है, ऐसा साहस का काम कौन कर सकता है, अपने को कष्ट देने वाले का भी भला चाहे, मेरे पापों को इसने पीछे किया और मैं देखो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करके मेरे प्राण बचाए। भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद फिर भोजन करने के बाद दुर्वासा जी ने कहा, राजन आप भी भोजन करो। दुर्वासा जी ने भोजन किया और फिर इन्होंने भी भोजन किया। कई देर तक उसके मन में ये बात रही कि देखो भगवान के भक्तों में कैसी भक्ति का गुण होता है। दुर्वासा जी वहां से भी रवाना हो गए और मन में सोचने लगे कि मैंने इतने वर्ष तपस्या करके व्यर्थ कमाए, भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई नहीं है, देखो कैसे क्षमाशील राजा हुए हो। ऐसे ऐसे राजाओं का चरित्र, किसी में क्षमा है, किसी में निर्लुपता है, तो किसी में सत्यवादिता है, ऐसे ऐसे चरित्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दुर्वासा जी के चले जाने के बाद ऐसे देखो जिसमें भक्ति ज्यादा होती उसको भक्ति का घमंड नहीं होता है। उनके मन में ही नहीं आया कि देखो दुर्वासा जैसे ऋषि को मैंने झुका दिया, ऐसे अम्बरीश जी के मन में भी नहीं आया। और वे भगवान के परम स्वरूप के अंदर ही मग्न रहने वाले हुए, और अंत में अपना राज्य पुत्रों को देकर वे तो वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। ऐसे हमारे अम्बरीश महाराज थे। उनके वंश में आगे चलते 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 एक युवनाश्व नाम के राजा हुए। वो एक बार यज्ञ में बैठे हुए थे, रात्रि में उनको प्यास लगी तो देखो वैदिक विधि का वो आदर करना भूल गए। ये ब्राह्मण लोग एक मंत्र का कलशा रखते हैं ना, अपने देखते हैं केवल पानी है, केवल पानी नहीं है, पानी तो अपने को दिखता है लेकिन मंत्र के द्वारा उसमें विशेष शक्ति आती है। युवनाश्व ने उसकी परवाह की नहीं, उठा करके रात्रि में प्यास लगी जल पी लिया। ब्राह्मणों ने पूछा भाई ये जल हमने अभिमंत्रित किया था, इस जल को किसने पिया? कि साहब मैंने पिया। अरे राजन तुम्हारी बात लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, क्यों? कि लोग तो सुनते हैं कि स्त्री के पेट से बच्चे पैदा होते, तेरे पेट से बच्चा पैदा होगा। तो भाई उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था मामधाता। मामधाता नाम क्यों रहा? क्योंकि ये इंद्र के लिए यज्ञ किया जा रहा था, तो ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रसन्न किया और कहा कि महाराज इसके इससे बेटा, पुरुष से बेटा होगा। अब पालन करने की शक्ति तो माँ में होती है, माँ में प्यार होता है, प्यार से ही माँ के खून का दूध बनता है। देखो दर्द से दुख से तो खून की मवाद बनती है, और प्यार से और स्नेह से बच्चे के जो है माँ बच्चे के लिए दूध पैदा कर लेती है प्यार के कारण से। खून वही है, जिस खून से मवाद बनता है उसी खून से दूध बनता है प्यार के कारण से। अब इनके कहां इतना प्यार है पुरुष में, इस बच्चे का क्या होगा? इंद्र ने देखा कि बात तो ठीक है, तो इंद्र ने अपनी अंगुली उस बच्चे के मुंह में दे दी, छोटे से बच्चे को, कि मेरी अंगुली में से अमृत टपकेगा और उससे बच्चे का पालन होगा। तो मामधाता ये मेरी शरण में रहेगा तो इसकी रक्षा करने वाला मैं हूं, तो ऐसे करके उसका नाम ही मानधाता पड़ गया। कहते हैं वो मानधाता बड़ा हुआ तो ऐसा प्रतापी सम्राट हुआ कि ये बड़े बड़े रावण वगैरह सब इसके कांपते थे मानधाता के सामने। दस्य वो रावणादय है। अब उस मानधाता के लड़के भी थे और 50 लड़कियां थी, 50 लड़कियां। एक बार सौबरी ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, वहां उन्होंने मछली का परिवार देखा तो मन में आया कि हमारे भी परिवार हो जाए तो बड़ा अच्छा, हम भी घर गृहस्थ में रहे। तो साधु होकर के जो गृहस्थी होता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है, गृहस्थी होकर जो साधु होता है उसकी तो बड़ी सदगति होती है, और साधु होकर के जो गृहस्थ में चला जाता है बड़ी दुर्गति होती है। सौबरी ऋषि के तो यही हुआ। अब जाए शादी करे, किससे शादी करे, कौन देवे लड़की इसको? तो सौबरी ऋषि गए मानधाता के पास की, तेरे पास 50 है तो शादी तो करेगा ही, मेरे साथ शादी कर दे। मानधाता ने देखा कि यदि मैं कर देता हूं तो दुनिया मुझे हंसेगी, और नहीं करता हूं तो ऋषि का क्या पता ये फूंक दे जिसमें हमको भस्म कर दे, क्या करें हम? कहा कि महाराज हमारे रनिवास में आप चले जाओ, वहां जाकर के जो लड़की आपको पसंद करेगी वो आपके साथ हम दे देंगे। कि पक्की बात है? ये बिल्कुल पक्की बात है महाराज। सौबरी ऋषि में तपोबल था, सौबरी ऋषि अपना इतना सुंदर रूप बनाए और गए रनिवास में। वहां गए तो वहां उन 50ों की 50ों कन्याओं ने कहा अयम मे पति, अयम मे पति, ये मेरे पति तो ये है, मेरे पति है, ममानुरूपोयम, ये मेरे अनुरूप है, और कोई मेरे अनुरूप पति नहीं है। ऐसा करके सब वो 50ों की 50ों बोलने लगी। अब वो 50 का टोड़ा लेकर के आया मानधाता के पास, कहे महाराज जय जय राम जी की, अच्छी बात है भाई, ये 50 मेरे साथ चलना चाहती है? कहा कि भाई मैं तो अपने वचन को हार गया, चले जाओ, ले जाओ। अब ले करके अपनी योग सिद्धियों से ऐसे 50 महल बनाए, सब प्रकार की सुख सामग्री जो उनको अपने पीहर में नहीं मिली उससे ज्यादा ससुराल में उनको सुख सामग्री मिली। स्वयं मानधाता अपनी लड़कियों से मिलने के लिए आया तो विस्मित है, वो बड़ा स्तंभित हो गया, विस्मित हो गया, और स्तंभम अजहात, अपना घमंड था ना कि मैं 7 द्वीप वाली पृथ्वी का स्वामी हूं, घमंड दूर हो गया। ऐसे महल, ऐसा ऐश्वर्य देखा, वो ही सौबरी ऋषि अपने मन के अंदर विचार करने लगे कि अरे मैं साधु बना हुआ था और मैंने कहां ये परिवार बढ़ा लिया, अब बच्चे कच्चे खूब हो गए उनके। तो मन में विचार आया, आप देखो वो साधुपने का अंश जाएगा थोड़े ही, त्याग तपस्या उनकी व्यर्थ थोड़ी जाएगी। वहां उन्होंने विचार किया कि ओ मनुष्य को वास्तव में भोगी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, भोगी पुरुषों के संग करने से उसके अंदर भोगों की इच्छा पैदा होती है। ओ हम कहां थे, जल के अंदर गए और मछलियों का परिवार देखा, और कहां मछली जैसी हमारी बुद्धि हो गई, मन में बड़ी ग्लानि हुई और अपने स्त्रियों को और सबको कह दिया कि भाई आप लोग तो अपने पुत्रों के पास रहो, मैं मेरा भजन करूंगा। तो पत्नियों ने कहा, महाराज भजन तो हम भी करेंगे, भजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हम भी भजन करेंगे। तो वनम जगा में अनुयु तत्पत्नी है, क्यों पति देवता है। स्त्री के लिए पति जो है वो भगवान होता है, उनका हम तो महलों में रहे, आप वन में भजन करो, हम भी भजन करेंगे कि आ जाओ। अब सौवरी ऋषि खूब भजन किए और अंत में परमात्मा को प्राप्त हो गए, और वे भी सौवरी ऋषि के पीछे अपने आप को जो है अग्नि में प्रवेश करके पतिलोक में चली गई। ऐसे ऐसे पैदा हुए, इन्हीं के अंदर त्रिशंकु हुआ, हरिश्चंद्र हुआ, बड़े बड़े राजा लोग हुए। बाहुक नाम का एक राजा हुआ, बाहुक अंत में। बाहुक नाम का राजा था, वो तो मर गया। मरने से पहले उसकी पत्नियां थी, उसके पत्नी के पत्नी थी, तो और वो नाम के ऋषि ने कहा कि ये पत्नी सती होने लगी, अरे तू सती मत हो, तेरे से बालक पैदा होगा। तो उसने मना कर दिया उसको। तो दूसरी जो स्त्री थी उसने उसको जहर दे दिया। तो और ऋषि को पता चल गया कि देखो कितनी डाह होती है इनमें। उन्होंने मंत्र के द्वारा उस जहर का प्रभाव उतार दिया, तो वो जहर सही थी पैदा हुआ। तो उस लड़के का नाम सगर हुआ, गरेण सहित सगर है। गर बोलते हैं जहर को, जहर के साथ पैदा हुआ, तो उसका नाम ही सगर हो गया। बड़ा प्रतापी राजा हुआ वो। पिता तो भाई हिमालय की तरफ आ गए थे हार हूर करके। उसने अपनी नई सेना बनाई और ताल जंग है, यवन है और है इन सब को जो है बश में कर लिया। और मारा नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया, मारना नहीं, प्राण मत लेना। इनको मुंडित कर दिया, इनकी मूछे उपाड़ दी और उनको वो जो है नीले पीले कपड़े पहन पहन करके रहने लगे। पता चले कि ये वो है, इसलिए नीले कपड़े पहनना अपने यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। अस्तु, एक बार वो सगर यज्ञ कर रहा था तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले गया। अब सगर के 60,000 बेटा थे, वो घोड़े को ढूंढने के लिए गए तो पृथ्वी को खोदने लगे, तो वो 7 समुद्र हो गए, वही सागर कहलाने लगे। वहां उन्होंने कपिल भगवान को देखा, उनके पास में घोड़े को देखा। अब कपिल भगवान थोड़े ही ऐसे हैं, तो उन्होंने कपिल भगवान को चोर समझ लिया, हमारे घोड़े को इन्होंने चोरा है, और बहुत भला बुरा कहने लगे वो 60,000। उनकी तपस्या में बाधा पड़ी, उन्होंने आंख खोलती वो तो भस्म हो गए। देखो वो ऋषि के क्रोध से भस्म नहीं हुए थे, वो अपने पाप से ही भस्म हो गए। कई के लोग कहते हैं कि अमुक साधु का अपराध किया, संत का अपराध किया, तो उसके घर में ऐसा हो गया, होता है। परंतु उसके अपराध में संत का संकल्प नहीं होता, संत का संकल्प नहीं होता। संत नहीं चाहता कि मुझसे नाराज रहने वाले व्यक्ति का अनिष्ट हो, संत नहीं चाहते ऐसा। तो फिर उसका अनिष्ट क्यों होता है? उसका अनिष्ट संत के अपराध एक बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। उस पाप के फल से उसी का ही पाप का फल उसके सामने आता है। इसलिए संत कभी भी किसी को शाप नहीं देते। अब उस वंश में आगे अंशुमान हुआ, उसने देखा कि मेरे चाचाओं को जो है कहां भस्म होना पड़ा है, मैं जाकर देखूं। तो देखा कि अरे यहां तो कपिल भगवान विराजमान है। अब अंशुमान ने कपिल भगवान की बड़ी स्तुति की कि महाराज आप नहीं होते तो संसार में कौन ज्ञान देता, सरलता का ज्ञान कौन देता, क्योंकि लोग तो माया से मोहित चित्त वाले हैं, आपने सबको स्वस्थ बनाया है। विदु स्वस्थम न बही प्रकाशः, ये बाहरी बार प्रकाशित होने वाले विषयों में आपके उपदेश को सुनने वाला कभी आकृष्ट नहीं होता। महाराज आपने ऐसा ज्ञान दिया कि जो लोग घर गृहस्थ को वास्तविक मानते थे उनके मन से ये बात आ गई, ये सब झूठा है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। मेरा भी महाराज मोह दूर हो गया आपके दर्शन करने से। कपिल भगवान खुश हो गए, कहने लगे कि भाई देखो अंशुमान जी, अब तुम गंगा जी लाओ तो तुम्हारे चाचाओं का कल्याण होगा, और तो कोई उपाय दिखता नहीं है। तब अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान खत्म हो गए, फिर दिलीप ने की, फिर भगीरथ ने की, तीन तीन पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, पर एक तो ये खतरा है कि हमारे यहाँ पापी लोग नहाएंगे तो पाप मेरे अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। तो कहा इसकी तो चिंता मत करो, हमारे यहाँ भारतवर्ष में महापुरुष बहुत हैं, हमारे पृथ्वी पर जिसमें भारतवर्ष है इसमें तो बहुत महापुरुष हैं, इसलिए महापुरुषों के स्नान करने से पापियों के पाप जो यहाँ धुपते हैं ना वो महापुरुषों के स्नान करने से वो भस्म हो जाएंगे, तुम्हारा जल तो वैसा का वैसा पवित्र रहेगा। तो कहा कि मेरा वेग कौन धारण करेगा, ऊपर से आऊंगी तब वेग, तो वेग धारण करने के लिए उन्होंने कहा रुद्र से मैं प्रार्थना करता हूँ। रुद्र ने कहा ठीक है ले आओ गंगा जी को, जनता का भला होगा। अब गंगा जी ऊपर से आई, गंगा जी के मन में था कि मेरे जैसा कौन ऐसे वेग से आ सकता है, खूब बड़े वेग से नीचे उतरी। शंकर जी देखें कैसे धारण करते हैं, शंकर जी ने कहा आ जाओ गंगा जी, कैसे आते हो, जितना वेग ताकत लगाओ। गंगा जी पूरी ताकत लगा के आई, भगवान शंकर ने भी आते क्या किया, गंगा जी को चारों अपने जटाओं में बना लिया, जटाओं से बांध लिया। गंगा जी जो है अंदर ही अंदर घबराने लगी, कहने लगी हे शंकर जी मैं तो आपका प्रभाव जानती नहीं थी, अब कम से कम सांस लेने के लिए तो कोई जगह रखो। तो कहा कि लो लो ये जटा में से ये यहाँ से मुंह निकालो अपना और यहाँ से तुम बहना चालू कर दो। तो गंगा जी रहती तो वहां है, सांस तो वहां लेती है, उनका जल है यूं चलता रहता है। भगवान शंकर की जटा में आज भी गंगा जी विराजमान है। जटा कटा है संभ्रमम भ्रमम नीलिम पनिर्झरी विलूल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी। ऐसे भाई भगवान शंकर ने उसके वेग को धारण किया और फिर उस गंगा जी के जल से वो सब के सब परम प्राप्त परम पद को प्राप्त हो गए। इस वंश में सुदास नाम का एक राजा हुआ और उसका पुत्र था, उसका नाम था सौदास, उसको कलमाश पाद भी कहते थे। एक बार वशिष्ठ जी ने उसको शाप दे दिया, क्यों, क्योंकि सौदास था वो एक बार शिकार खेलने के लिए गया तो वहां शिकार के अंदर उसने किसी राक्षस के भाई को मार दिया, तो उस भाई ने बदला लेने के लिए विचार किया, जिस राक्षस को मारा उसके भाई ने बदला लेने की सोची। तो वो भाई क्या किया कि रसोईदार का रूप बना के आया, रोज रसोईदार तो आता ही था, वो रसोईदार जैसा रूप बना करके घर में घुस गया और रसोई बनाई। उस दिन ब्राह्मणों का भोजन था तो उसमें मांस मिला दिया। ब्राह्मण थे वशिष्ठ जी महाराज जो है उन्होंने श्राप दिया, अरे जो है तुमने इस मांस मिलाया, 12 बरस जाओ तुम, जो है 12 बरस तक जाओ तुम राक्षस हो जाओ। पहले तो यही कहा राक्षस हो जाओ। तो सौदास ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों राक्षस हो जाऊं, अगर मैं राक्षस हो जाऊं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ता। उन्होंने मंत्र लेकर के बोल के वो भी गुरु जी के ऊपर सांप छोड़ने लगा, तो मदयंती उनकी पत्नी आएगी, क्या करते हो। माता पिता गुरुजन जब अपने पर क्रोध करते हैं तो उस क्रोध को विनय से स्वीकार करना चाहिए कि उसका प्रतिकार करना चाहिए। ये मैं जल गुरुजी पर नहीं छिड़कने दूंगी। तो उन्होंने अपना जल था अपने पैर पर छिड़क लिया तो पैर उनके काले हो गए, तब उनका नाम कलमाश पाद पड़ा। इधर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ जी आपने सोच समझ के श्राप नहीं दिया, इसकी कोई गलती नहीं है, राक्षस की गलती है। तब कहा कि चलो 12 बरस तक इसको सांप रहेगा। तो वो राक्षस हो गया, अब जंगल में वो राक्षसों की तरह रहे। एक बार एक नव दंपति ब्राह्मण परिवार वो वहां थे तो वहां उस ब्राह्मण बालक को पकड़, ब्राह्मण जवान था उसको पकड़ खाने लगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, आप क्यों मार रहे हो। तो कहा उसने सुनी नहीं कोई बात, अरे आप देखो थोड़े समय के लिए राक्षस हो, उसके बाद वापिस आप हमारे राजा ही बनोगे, आप ये पाप मत करो, पर नहीं माने। और वो खा गया उस ब्राह्मण को मार करके। ब्राह्मण के मर जाने के बाद में फिर उस स्त्री ने श्राप दिया कि तुमने मेरे पति को मारा है, तो जाओ तुम भी अपने पत्नी के पास में जाओगे तो तुम्हारा भी सिर खत्म, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, तुम्हारा सिर समाप्त हो जाएगा, तुम मर जाओगे। 12 बरस तक उस ऋषि के श्राप में वो रहा राक्षस, और 12 वर्ष के बाद में जब वो वापिस अपने श्राप में आया तब भाई उसको पत्नी ने पहले ही मना कर दिया कि आपको श्राप लगा हुआ है, आप सावधान रहना। अब ध्यान देना, उनके कोई संतान तो थी नहीं, राजा के संतान नहीं थी तो सब प्रजा को चिंता होने लगी, तो वशिष्ठ जी महाराज को भी चिंता हुई कि क्या करें हम। तब वशिष्ठ जी महाराज ने उसको कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, हम एक तुमको ऐसा उपाय बता देंगे, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा और तुम्हारे पति मरेंगे भी नहीं, और उस गर्भ की रक्षा हम करेंगे और इनको हम मरने नहीं देंगे, वो सांप हम उतार देंगे। अब वो पेट के अंदर गर्भ रहा तो वो बाहर आवे ही नहीं, अंदर ही अंदर रहा। तब उसको पत्थर से जो है पीट पीट करके बाहर निकाला, तब उसका नाम अश्मक रहा, अश्मक। सब क्षत्रियों के समाप्त हो जाने पर जब वो परशुराम जी ने मारा तो सब क्षत्रियों के समाप्त हो जाने पर वो एक अश्मक ही बाकी बचा था, इसका नाम था नारी कवच। कई स्त्रियों ने उसको सुरक्षित रख लिया था अपने पास, इसको मरने नहीं दिया, इसलिए उसका नाम नारी कवच भी था। कहता हूं उससे आगे वंश में खटवांग नाम का राजा हुआ, देवताओं के पक्ष में युद्ध कर रहा था। देवताओं ने कहा कि भाई अब इसकी उम्र, देवताओं से उसने कहा कि मेरे मृत्यु के अंदर यदि थोड़ा सा समय बाकी हो, एक मुहूर्त बाकी हो तो आप हमको बोल देना है। तो देवताओं ने कहा ठीक है, लड़ता रहा, लड़ते लड़ते देवताओं ने कहा कि राजन अब तुम्हारा एक मुहूर्त बाकी है, एक मुहूर्त के बाद मर जाओगे, तो सावधान हो गया। और सुखदेव जी महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अथे शमाया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर् भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। संसार के सब भोग पदार्थों से आसक्ति का त्याग किया और फिर उसने विश्व का निर्माण करने वाले भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मैं तो आपकी शरण में हूँ। देखो शरणागति के लिए एक मुहूर्त भी बहुत समय था उनके लिए, बहुत समय। ततः स्वभावम आश्रित है, वो क्या अपने भगवान के शरण में चला गया तो सबसे उसका संबंध विच्छेद हो गया। और देखो लोग कहते हैं भक्ति में जाने वाले को ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान में चला जाता है उसको भक्ति नहीं मिलती, बिल्कुल अटपटी बात है। जब तक इस मार्ग में नहीं जाते हैं तब तक ये भ्रम है, इस मार्ग में जाने के बाद ऐसा नहीं होता। अब देखो खटवांग के लिए भागवत में ये विचित्र बात ही आएगी, क्या यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्म अशून्यम शून्य कल्पितम, जिस परब्रह्म परमात्मा को शून्य के समान बताया है। अरे शून्य का अर्थ होता है अभाव, क्या परमात्मा का अभाव है क्या? क्या नहीं, अशून्यम अभाव नहीं है पर अभाव की तरह दिखता है, अशून्यम शून्य कल्पितम। सतचित आनंद की अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती। सतचित आनंद को अपने आप के द्वारा दर्शन किया जाता है पर वो दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए वो शून्य कल्पित है लेकिन अशून्य है। कैसी विचित्र बात है, ऐसे हमारे खटवांग जी भगवान में मन लगाकर भगवान को प्राप्त हो गए। उस खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज के फिर दशरथ जी महाराज हुए, जहां भगवान ने अपने ही चार रूपों में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात किया। उनका चरित्र तो हे परीक्षित, हर आदमी के मुंह पर नाच रहा है, कैसा विचित्र चरित्र है उनका। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या छूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रु विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कोसलेन्द्रोवतान्न। ऐसे भगवान हमारी रक्षा करे महाराज। माता पिता की आज्ञा मान करके जो वन में चले गए और ऐसे उनके कोमल चरण जो सीता जी कोमल चरणों को दबा दी तो उनके मन में बहम भ्रम होता था कि मेरे कठोर हाथ इनके कोमल चरणों को कहीं पीड़ा न पहुंचा दे। वे बंदरों के साथ साथ घूमे, बंदरों के साथ साथ रहे और शूर्पणखा को जब विरूप कर दिया और रावण ने सीता का हरण किया तो ऐसे कल्पे, ऐसे रोए जैसे कोई जो है करुणा को ऐसा फैलाया कि पत्थर भी रो पड़े, ऐसे वो करुणा को फैलाने वाले। और पुरुषार्थ ऐसा दिखाया कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। ये भगवान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब काम करने में समर्थ है। वो भगवान हमारी रक्षा करें। विश्वामित्री के साथ यज्ञ में गए, स्वयंवर में सीता जी को प्राप्त किया, माता पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए वे वन में गए। यद्यपि पिताजी स्त्री के वशीभूत होकर के बोले परंतु नहीं, सिरसा जगरी है, उन्होंने उनके वचनों को सिर से पालित किया। खर और दूषण की सेना को 14,000 को एक अकेले राम जी ने उनको मारा। फिर मारीच को मारा। सीता के हरण के बाद उन्होंने बंदरों से मित्रता की। परीक्षित बंदरों से क्यों की? और राजा लोग नहीं थे, भरत के पास में भेज सकते थे भगवान हनुमान जी को भी। भरत, हनुमान तुम जाओ जो है वहां अयोध्या में, भरत को कहो कि भाई सीता जी को कोई चोर ले गया रावण, तुम सेना लेकर के आओ। चित्रकूट तो तुम बहुत बड़ी सेना लेकर आए थे, और जनक जी को जाकर के भी कहो। अब जनक जी भरत जी सब सेना लेकर आए, चलो अपन लड़ने के लिए। पर नहीं, किसी को भी नहीं कहा। उन्होंने समुद्र लंघन करने के लिए हनुमान जी को कहा। क्या है ये? गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए कि अपने भुजबल के ऊपर विवाह करते हो, गृहस्थ चलाते हो, उसका सारा भार अपने पर रखो। हमारा दुख दूर करने के लिए हम दूसरे की सहायता लेवे उचित नहीं है। अपना ही पुरुषार्थ करके उन्होंने बंदरों को जो है अपनी सेना बनाया। पहले सुग्रीव का उपकार किया, फिर उसको काम में लिया। ऐसे ही विभीषण को पहले राजगद्दी दी, उसके बाद विभीषण को काम में लिया। वे भगवान रावण को जिस समय में युद्ध में फटकारते थे, उस समय में रावण भी उनकी फटकार से घबरा जाता था। रावण के मरने पर उनकी स्त्रियां बहुत विलाप करने लगी। फिर भगवान लंका में से पुष्पक विमान पर विराजमान होकर यहाँ नंदीग्राम आए, क्योंकि नंदीग्राम में भरत जी महाराज गौओं को जौ खिलाते थे और वो जौ गौ खाती थी। खाने के बाद गोबर में जो जौ निकलता था उसको पीस करके उसका वो भोजन करते थे, गोमूत्र में उबाल करके भोजन करते थे। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भगवान से रहा नहीं गया, देखो मेरे लिए कैसी तपस्या करता है। गोबर में से निकला हुआ जोर उसको भी गोमूत्र में उसको उबाल करके बेचारा भोजन करता है। भरत के बिना रह नहीं सके, दौड़े दौड़े आए, भरत जी से बड़े प्रेम से मिले और राजगद्दी पर वो विराजमान हो गए। सब भाइयों को ऐसा लगा कि जैसे राज्य हमारा ही है। एक बार वे छिप करके लोगों की बात सुनने के लिए स्वयं गए, वहां एक पति पत्नी का झगड़ा देखा। कहा कि मैं कोई राम थोड़े ही हूं जो दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लूं, निकल जा तू यहां से। भगवान ने सुन लिया, भगवान ने देखा कि अरे हमारे और सीता को ये लोग प्रेम को समझते नहीं है। राजा को ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए कि जिससे प्रजा में सुख शांति रहे। उन्होंने सीता को वहां से भेज दिया और वे वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे, उन राम जी के लव और कुश हुए। लक्ष्मण के अंगद और चित्र केतु हुए, भरत के तक्ष और पुष्कल हुए, और शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन नाम के लड़के पैदा हुए। क्या बताएं, भगवान राम के चरणों का ध्यान करती हुई सीता लव और कुश को बहुत योग्य बना दिया। भगवान ने स्त्री के लिए जो विलाप किया वो स्त्री में आसक्त पुरुषों को तो सावधान करने के लिए कि देखो मैं भी स्त्री के लिए रो सकता हूं तो तुम्हारी क्या दशा होगी। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर संसार में मर्यादा स्थापित करने आया हूं, और स्त्री के विषय में जो है मेरी कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि सीता मुझसे अलग है ही नहीं। फिर भी एक लीला के अंदर यदि स्त्री हरण से मैं दुखी हो सकता हूँ, तुम्हारी क्या दशा होगी। ऐसे लोगों को शिक्षा दी है। ग्राम्यस्य गृह चेतस है, 13,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। देखो और जगह 10,000 आता है, कहीं 11,000 आता है, भागवत में 13,000 वर्ष तक आता है। भगवान के समय में प्रजा बड़ी सुखी थी। भगवान ने यज्ञ करके चारों दिशाओं को ब्राह्मणों को दान में दी। ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज, हम ये राज्य नहीं लेंगे, क्योंकि राज्य लेने वाले को कठोर बर्ताव करना पड़ता है, और ब्राह्मण का हृदय कठोर होता नहीं, कोमल होता है, हमसे शासन नहीं होता। तो कहा हम तो आपको कुछ देना चाहते हैं, देना ही चाहते हो तो हम भी मांगना चाहते हैं कि बोलो मांगिए, आपके आपके प्रति हमारी भक्ति होवे, बस यही हम चाहते हैं। ऐसे उन्होंने ब्राह्मणों ने भगवान से आशीर्वाद लिया। ऐसे ऐसे सूर्य वंश में आगे जाकर कई राजा होंगे, उनमें एक मरु नाम का राजा हुआ जो इस समय में योग सिद्ध से कलाप ग्राम में रह रहा है। जब कलयुग जब खत्म हो जाए, कलयुग जब बहुत बढ़ जाएगा और कल्कि भगवान पधारेंगे, उस समय में ये मरु, ये सूर्य वंश वाला और देवापी ये चंद्र वंश वाला, ये दोनों आकर वापिस सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना करेंगे। इधर वो जो श्राद्धदेव मनु का एक पुत्र था राजा निमि, उसने जो है एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में अपने गुरुजी से कहा कि महाराज मेरा यज्ञ करा दो। गुरुजी ने कहा कि हम तो नहीं करा पाएंगे, हम तो इंद्र के वहां पर गए हुए हैं। तो कहा आप इंद्र के वहां पर हैं तो हैं, लेकिन आप हमको तो जो है हमारा तो यज्ञ करवा दो। नहीं, हमने पहले उनका यज्ञ स्वीकार कर लिया। ध्यान देना, राजा ने देखा कि अच्छा काम तो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। देखो एक बहुत गंभीर बात है, संतों की बताई हुई बात, अपने मन में कभी खराब बात पैदा हो तो अपना सिर है ना हिला देना, ना 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 अभी नहीं, ना अभी नहीं, ऐसा सिर हिला देना चाहिए। और अच्छा भाव पैदा हो तत्काल उसको करना चाहिए, तत्काल। बुरे काम के लिए आप यदि उसको आगे के लिए डाल दोगे तो आगे अच्छी वृत्ति के द्वारा बुरा काम फिर नहीं होगा, और बुरा काम के मन में आए उसी समय आप बुरा काम कर दोगे तो आपके अंदर संस्कार और पड़ेगा। इसलिए बुरे काम के लिए तो आगे पर डाल दो, फिर देखा जाएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, आगे देखा जाएगा, अभी नहीं। और अच्छे काम के मन में आए तत्काल कर दोगे, ये तो कर ही लो, क्या पता शरीर रहे न रहे, अच्छा काम से कहीं वंचित न रह जाए। ऐसे ही राजा निमि ने विचार किया कि भाई यज्ञ करना है तो करना है, गुरुजी तो यहाँ नहीं है, वो तो कह मैं इंद्र के वहां जा रहा हूँ। गुरुजी नहीं, दूसरों को बुला लो भाई, दूसरों को बुला के यज्ञ किया। इधर गुरुजी आ गए, नाराज हो गए कि मेरे शिष्य होकर के तुमने दूसरों से यज्ञ क्यों करवाया। गुरुजी ने उठा के श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण से बिचारे वो जो है खत्म हो गए, मर गए। देवताओं को ये चीज बहुत बुरी लगी। देवताओं ने कहा देखो खुद करो नहीं और दूसरों को आप मना करो। देवताओं ने कहा हम आपको जिला देते हैं, आपके गुरुजी क्या करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, गुरुजी ने जो दंड दिया है उस दंड को स्वीकार करो। गुरुजी के ही मन में आ जाए कि अरे मैंने अच्छा नहीं किया, और वो जो जो है वापिस क्षमा पूर्वक जो बर्ताव करेंगे वो बर्ताव विशेष काम आएगा। इसलिए वो गुरु कृपा की प्रतीक्षा करते रहे, और मरे हुए पड़े तो पड़े ही रहे। फिर इनको कहा कि महाराज आप कुछ तो मांगिए ना, रागियो जीवतु। देवताओं ने कहा कि हम तो आपको जीवित करके रहेंगे। कि भाई जीवित करोगे फिर कभी मरना पड़ेगा, यानी हम आपको अमर बना दें कि अमर अमर मत बनाओ, यदि आप इतना ही करते हो तो लोगों के आंखों के ऊपर ये जगह, यहाँ पर मुझे रहने दो, यहाँ ये पलकों के ऊपर ये जो यहाँ ये भौ है, भौ के यहाँ नीचे ये खाली जगह है, यहाँ हमको रहने दीजिए। कि यहाँ रह करके क्या करोगे, यहाँ रह करके हम जो है संतों के दर्शन करेंगे, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करेंगे, तो अच्छी बात है। और फिर उनका जो मरा हुआ शरीर था, उस मरे हुए शरीर से मंथन करने पर जनक पैदा हुए और विदेह पैदा हुई। विदेह माने मंथन करने से पैदा हुए, तो वो जो है मैथिल कहलाए, मैथिल मंथनाद मैथिल है। और जो है निष्प्राण शरीर से पैदा हुए थे ना, इसलिए विदेह कहलाए। और जनक क्यों कहलाए, कि जन्मना जनक है, ऐसे से जन्म हुआ इसलिए जनक कहलाई। उपाधि है इनकी, नाम इनका तो और होता था पर साथ में उपाधि और लगती है। उस जनक वंश में बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए, शिरध्वज राजा हुए, जिनके ये सीता जी थी, जिनका राम जी के साथ विवाह हुआ था। कहते हैं इसमें ऐसे ऐसे राजा हुए, जिन सब राजाओं के ऊपर हमारे योगेश्वर अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी महाराज की पूर्ण कृपा रही है। इसीलिए जनक वंश में पैदा होने वाले राजा लोग द्वंदेर मुक्ता गृहेश्वपी, वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी सुख दुख द्वंद से रहित रहते थे, वो काम करते हुए भी निष्कामित थे। आत्मविद्या विशारदा, परमात्म तत्व को खूब अच्छा जानने वाले थे जनक। ये हमने आपको सूर्यवंश सुनाया, अब आप चंद्रवंश सुनिए। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा जी से अत्रि पैदा हुए और अत्रि की आंखों से चंद्रमा पैदा हुए। चंद्रमा थे ये क्या, सब नक्षत्रों के स्वामी हो गए, तो घमंड आ गया, तो इन्होंने बृहस्पति की पत्नी को रख लिया। वहां पर फिर देवताओं का और असुरों का खूब युद्ध हुआ, उसमें शुक्राचार्य जी और बृहस्पति इन दोनों के भी आपस में विद्याओं की लड़ाई हुई। अब बृहस्पति के पक्ष में थे देवता लोग और रुद्र थे, दान असुर थे, ये हो गए थे हमारे चंद्रमा के पक्ष में। घर में फूट होती है तो सब भाई आपस में मिल मिला करके फूट डालने की बात करते, जोड़ने वाली नहीं करते। तो असुरों ने चंद्रमा का पक्ष लिया, अरे तुम तो असुरों तुम तो चंद्रमा से रात दिन लड़ते झगड़ते हो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है, तुम तो चंद्रमा को जो है पकड़ते हो, खाते हो, ग्रहण करते हो, आज क्या हो गया? बस आज क्या हुआ कि देवताओं के अंदर ही लड़ाई पैदा करने के लिए दानव लोग चंद्रमा के पक्ष में हो गए। ब्रह्मा जी को पता चला कि आपस में खूब लड़ रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने जाकर के चंद्रमा को धमकाया कि तूने बृहस्पति की स्त्री को अपने यहां रख लिया और ऊपर से लड़ता झगड़ता हो रहे और असुरों का और दानवों का सहयोग लेकर के तू असुरों और देवताओं का ही नाश करता है। तब चंद्रमा ने ब्रह्मा जी कहने से युद्ध बंद कर दिया और जो बृहस्पति थे उनकी पत्नी थी तारा, वो बृहस्पति को दे दी और वहां उससे एक लड़का पैदा हुआ। अब वो लड़का बृहस्पति तो कहते हैं कि मेरा है, चंद्रमा कहते हैं कि मेरा है, किसका है लड़का? तो अब वो तारा ने तो कहा नहीं किसका लड़का है। देखो ये लोक दृष्टि से मत देखना, इसको कोई व्यभिचार न समझे, कोई इसको विजाती क्रिया में न देखे कि देखो ये कैसा ऊपर के लोगों में कैसा होता, उस दृष्टि से नहीं देखना है। ये एक तात्विक दृष्टि से देखना है कि तत्व क्या है, कि जो काम बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति भी बुरा करता है उसकी बुराई सब जगह होती है। उस दृष्टि से ये बात बता रहे हैं, जैसे कोई अभिनय में कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा वो है, तो वास्तव में उसका पुत्र नहीं होता, वो अभिनय मात्र है। उस अभिनय से ये बताना जाता है कि देखो ये अच्छाई है और ये बुराई है। तो ये लोगों की शिक्षा के लिए बातें हैं कि ऐसी बुराइयां नहीं होनी चाहिए और ऐसी अच्छाइयां होनी चाहिए। तब उस तारा से उस लड़के ने ही पूछा कि तू बता माँ कि मैं किसका बेटा हूँ, चंद्रमा का हूँ कि मैं बृहस्पति का हूँ, साफ साफ बता। तब उस तारा ने कहा कि तू चंद्रमा का बेटा है। तो कहा ठीक है, चंद्रमा का बेटा हूँ तो मैं चंद्रमा के पास रहूंगा और आप जो है बृहस्पति के पास रहिए। तो वो बुध नाम का जो लड़का था वो चंद्रमा के पास रहकर फिर अलग रहने लग गया। उसी बुध के वो इला विवाहित हुई और उसे पुरुरवा पैदा हुए। पुरुरवा कितने सुंदर और कितने गुणवान थे। ध्यान देना कि स्वर्ग के अंदर रहने वाली उर्वशी नाम की अप्सरा, ये स्वर्ग के शरीरों को हमारे शरीर बहुत ही खराब लगते हैं, दुर्गंध आती है उनको दूर से। जैसे हम लोग मेले में पड़े हुए सुअर को देखते हैं और उसको देखकर ग्लानि होती है, दूर से ही ग्लानि होती है, ऐसे हमारे शरीरों से देवताओं को दूर से बदबू आती है। हमारे पसीने से, हमारे श्वास से, हमारे मलमूत्र से बड़ी दुर्गंध आती है देवताओं को। चाहते ही नहीं है मानव शरीर, मानव में तो बहुत ही दुर्गंध है। परंतु पुरुरवा भी यहाँ होते भी कैसा था, उसका शरीर भी कितना विलक्षण, बुद्ध का बेटा, और उसके शरीर सौंदर्य को और अन्य अन्य गुणों को देखकर उर्वशी मोहित होकर स्वर्ग को छोड़कर के यहाँ आई और पुरुरवा के पास रहने लगी। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मेरे ये भेड़ के बच्चे हैं ना, ये बच्चे कोई कभी गायब नहीं होंगे, जिस वक्त भेड़ के बच्चे गायब हो जाएंगे तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। तो इंद्र ने आकर के वो भेड़ के बच्चे चुरवा लिए तो वो भी गायब हो गई। अब वो उर्वशी के लिए बहुत तड़पता रहा। तड़पते तड़पते उसने एक अग्नि से तीन अग्नियां प्रकट की, और पहले एक ही वेद था, फिर उसमें वेद की तीन विधियां प्रारंभ हो गई। एक पुरा वेद प्रणव सर्ववांगमय है। उसके बाद इसने जाकर के वेद त्रय का निर्माण किया, अग्नि भी तीन हो गई, और पुरुरवा ने आगे ज्ञान का यज्ञ का बड़ा विस्तार किया। ऐसा ये पुरुरवा था, अंत में उर्वशी लोक में ही चला गया। इस वंश में एक गाधी नाम के राजा हुए, गाधी ऋषि हुए गाधी, और उसके जो है सत्यवती नाम की कन्या थी। ऋचिक नाम के एक ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कन्या के साथ हमारा विवाह कर दो। उसने कहा कर तो देंगे, लेकिन आपको ऐसे घोड़े लाने पड़ेंगे जिनका एक कान तो काला हो और बाकी सारे शरीर में सफेदी हो। ऐसा आप हमको 1000 घोड़ा ला करके दे दो, विवाह कर देंगे। 1000 घोड़ा दे दिया वरुण देवता को कह करके, विवाह कर लिया। अब विवाह हो जाने के बाद ऋचि की पत्नी सत्यवती ऋचि के यहाँ रहने लगी, तो उसकी माँ भी वहाँ आने लगी अपने बेटी से मिलने के लिए। अब ऋचि के कोई संतान नहीं थी, तो वो गादी भी वहाँ आए मिलने के लिए। तो गादी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो जो है ये ऋचि के एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे कि हमारे संतान होनी चाहिए। तो वो वहाँ पर उनकी सासू जी भी आ गई और उनके ससुर भी आ गए, भाई हमारे भी कोई लड़का नहीं है, यज्ञ करते हो तो भाई हमारे भी हो जाएगा, ठीक है तुम्हारे भी हो जाएगा, दो चरु पकाए। अब ऋषि तो स्नान करने के लिए गए, और इधर जो है सत्यवती की जो माँ थी उसने अपने बेटी को फुसलाया कि तेरा भाग मुझे दे दे, मेरा भाग तू ले ले, अदला बदली कराई। उस अदला बदली के कारण से देखो जो है सत्यवती के तो जमदग्नि पैदा हुआ, और उसके गादी के तो जमदग्नि पैदा हुए और सत्यवती के परशुराम जी पैदा हुए, सत्यवती के विश्वामित्र जी पैदा हुए। विश्वामित्र जी ऋचिक ने कहा कि तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया, तुम्हारे तो भाई लड़का जो है बहुत क्रोधी होगा। तब कहा मावेन भूत, मेरे लड़का तो अच्छा होना चाहिए, कि तेरा पोता गड़बड़ होगा। तो सत्यवती के जमदग्नि जी और जमदग्नि जी के फिर परशुराम जी महाराज बड़े विचित्र पराक्रमी हुए। परशुराम जी महाराज ऐसे हुए भाई, वो सहस्रार्जुन था, वो परशुराम जी के पिताजी के वहां आया और गाय ले जाने लगा। तब परशुराम जी ने उसको मारा, परशुराम जी ने मार करके और उसका जो है समाप्तिकरण कर उसका समाप्त कर दिया। तब उसके बेटों ने बदला लेना चाहा, तो बेटों ने भी उसका बदला लिया। तो क्या हुआ कि एक बार कहीं गए हुए थे परशुराम जी जंगल में, और पीछे से आकर के उसके बेटों ने जमदग्नि को मार दिया। फिर जमदग्नि आकाश के अंदर चले गए, सप्तऋषियों के मंडल में, अगले मनवंतर में वो सप्तऋषि मंडल में चले जाएंगे। इन परशुराम जी की एक बात बताते हैं, ये बड़े पितृभक्त थे। ध्यान से सुने कि परशुराम जी की माता थी, वो माता गंगा जी में जो है गई जल लाने के लिए, पति संध्या कर रहे थे उनके लिए जल लाने के लिए गई। अब जल लाने के लिए गई थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि उस नदी के अंदर गंधर्व लोग आए हुए थे और वो स्नान कर रहे थे। अब गंधर्वों के केस बड़े सुंदर, शरीर उनका बड़ा सुंदर, और वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी रेणु का, जमदग्नि की पत्नी, परशुराम जी की माँ। अब ध्यान से सुनना हो पतिव्रताओं की क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो वो जो वहां गई, तो वहां जाकर के उनको देखा, तो देखते ही उसके मन में एक भाव पैदा हुआ। क्या? अरे गंधर्व लोग बड़े सुंदर होते हैं, बस इनका शरीर कितना सुंदर होता है। स्त्री के लिए किसी का भी शरीर सुंदर तो दिखना ही नहीं चाहिए। यदि किसी का भी शरीर, किसका शरीर बड़ा सुंदर है, ये भाव भी पैदा हो गया, तो पातिव्रत्य की दृष्टि से थोड़ी सी नीचे आ गई। तो वहां रेणुका जी ने देख करके विचार किया, गंधर्व लोग बड़े सुंदर होते हैं, उनकी सुंदरता देखने लगी। इधर संध्या में देरी हो गई, तो वो जल आया उनके पास, जल लेकर के आई और पूछा, अगर देरी कैसे हो गई, कैसी देरी होगी, वहां अच्छी बात है। उन्हें आंख बंद करके, अरे वो गंधर्वों को देखकर सुंदर कहने लगी। ये बात देख करके हमारे जो है जमदग्नि ऋषि वो नाराज हो गए। आपने सब बेटों से कहा, बेटों तुम्हारी माँ को तुम मार दो। बेटों ने कहा, क्या बात करते हो, माँ को कभी मारा जाता है, हम तो नहीं मारते। परशुराम जी कहीं बाहर गए हुए थे, परशुराम जी आए, परशुराम जी को आते जमदग्नि, परशुराम, हाँ पिताजी, क्या बात है, क्या आज्ञा है, तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारी माँ को मार दो। अच्छी बात है, सबको मार दिया। अरे तुम तो मेरी आज्ञा का पालन किया, कोई वरदान मांग लो कि हमारा सब जीवित हो जाए और किसी को पता नहीं चले कि मैंने इनका सिर काटा है। कहता था अस्तु, तो सब जीवित हो गए। अब ये कथा का अर्थ क्या हुआ, ये मारने की आज्ञा देना, तत्क्षण जीवित कर देना, ये क्यों? ये बताते हैं कि माता पिता की उस आज्ञा को मानो, जिस आज्ञा का यदि कहीं किसी प्रकार से दोष घटित होता हो तो वो दोष वापिस सुधार सकते हो, तो वो बात मानो। अब आपको हमको कोई हमारे पिता माता किसी को मारने के लिए कह देवे, क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है कि मारे में कोई जिला सकते हैं? कैसा विश्वास नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं, तो ऐसी आज्ञा को नहीं मानना चाहिए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे कोई हो। माता पिता की हर आज्ञा मानो, पर वो आज्ञा मानो कि जिस आज्ञा के मनवाने से माँ बाप को किसी प्रकार से कष्ट न हो, उनका अहित न हो। माँ बाप की बात को इसलिए मत मानो कि ये बात मानने लायक नहीं है, बल्कि ये सोचो कि ये काम करने से माँ का अहित होगा और पिता का अहित होगा। परशुराम जी को मालूम था कि ये अहित होने वाला नहीं है इनका, ये अहित होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पिताजी जिला सकते हैं। तो जो काम बिगड़ा हुआ हो, बिगड़े काम के लिए आदेश देते हो माता पिता, यदि वो सुधार सकते हो तो मानो, नहीं सुधार सकते हो तो मत मानो। ऐसी ये बातें हुई। इस प्रकार से चंद्रवंश में आगे नहुष राजा हुए, नहुष राजा, राजा नहुष हुए, जो कि जो है राजा नहुष हुए, जिनके छह लड़का थे, यति ययाति सयाति आयति वियति और कृति, छह लड़का थे। यति तो बड़े ज्ञानी थे, इसलिए यति यति नाम हो गया, और ययाति थे, उसके दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी थी शुक्राचार्य जी की पुत्री, शर्मिष्ठा थी, वृषपर्वा की पुत्री। तो कहने लगे कि ब्राह्मण की कन्या ययाति को कैसे विवाहित की गई। तो कहते हैं कि देखो एक बार की बात है कि ये देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों तालाब के अंदर स्नान कर रहे थे, उसी समय में भगवान शंकर उधर से आए। तो हड़बड़ाहट में देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, ध्यान रहा नहीं, हड़बड़ाहट थी, पहन लिए। पहनने कारण से देवयानी बिगड़ गए कि अरे तू क्षत्राणी है, तू हमसे नीची है, हम तुझसे ऊंचे पड़ते हैं, हमारे तुमने कपड़े पहन लिए, तुमको पता नहीं है ब्राह्मण के पहने हुए कपड़े तुम्हारे लिए कितने आदरणीय होते हैं, तुम हमारे कपड़े पहन लिए हो, ऐसे करके उनको डांटने लगी। शर्मिष्ठा ने कहा कि अरे तुम ब्राह्मण तो हो लेकिन तुम्हारे घर में भोजन बनता है वो कहां से आता है, हमारे यहाँ हाथ पसारते पसारते फिरती हो ना तब तुमको ये अन्न मिलता है, मांग के खाना और ऊपर से रौब और जमाना, देखा नहीं ऐसे को। ऐसे करके शर्मिष्ठा ने क्रोध किया और उठा करके शर्मिष्ठा ने उसको डाल दिया, कुएं में डाल दिया। कुएं में डल जाने के पड़ जाने के बाद भाई वो बिचारी पड़ी रही कुएं में। उधर वो ययाति शिकार खेलने आया, उसको पता चल उसको प्यास लगी आई, प्यास लगी आई तो वहां देखा कि एक स्त्री है इसके कुएं में, तो उसने हाथ पकड़ के उसको निकाला। अब हाथ तो पकड़ा ही जाएगा, बाहर निकालेंगे तो हाथ पकड़ती देवयानी ने कहा देखो अब हमारा जिंदगी भर हाथ नहीं छूटेगा, क्या आप किसकी बेटी होगी, शुक्राचार्य जी की, राम राम राम, ब्राह्मण की कन्या हो तो आपके हाथ को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तो कहा कि ठीक है मेरे को तो ब्राह्मण कभी विवाहित होगा ही नहीं, मुझे क्यों, मुझे साप लगा हुआ है, कच्छ का साप लगा हुआ है। ये कच्छ कौन था, ये शुक्राचार्य जी, ये कच्छ था ना, ये बृहस्पति का लड़का था कच्छ, और वो शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या पढ़ने आया था। तो देवयानी और कच्छ के बीच में बात हुई, देवयानी ने प्रस्ताव रखा कि देखो कच्छ तुम बृहस्पति के पुत्र हो और मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूँ, तुम दोनों का यदि तुम्हारा मन हो तो तुम हमारे साथ विवाह कर लो ताकि ठीक ढंग से अपनी गृहस्थी ठीक बैठ जाएगी, क्योंकि तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। तो कच्छ ने कहा कि देखो तुम हमारे गुरु की बेटी हो तो मेरे लिए तुम गुरु बहन हो, मैं तुमको किसी प्रकार से स्त्री रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। तब जो है देवयानी को उसने शाप दे दिया, देवयानी को शाप दिया कि तुझे कभी ब्राह्मण जो है वर मिलेगा ही नहीं, ऐसे करके शाप दे दिया। उस शाप के कारण से मुझे कभी कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा, तुमको स्वीकार कर लिया सो कर लिया। तो कहा कि अब तुमने स्वीकार कर लिया लेकिन तुम्हारे पिताजी हमको क्या कहेंगे। तो वो पिताजी के पास में गई, पिताजी को जाकर के कहा कि देखो पिताजी अब अपने आप तो इन राजाओं के यहाँ पर इनके भलाई के लिए कितना काम करते हो और ये आपको मंगता समझते हैं कि ये मंगते हैं मंगते हैं मंगते हैं, चलो यहाँ से अपने लोग तो चलते हैं। तो वो बेचारे शुक्राचार्य जी वहां से अपने सामान लद करके रवाना हो गए। राजा वृषपर्वा को पता चला, कह रहे महाराज ये तो लड़कियों की बच्चियों की आपस की लड़ाई है, आप तो कम से कम मेरी ओर देखो, प्रजा की ओर देखो, आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो कहा कि मेरी देवयानी को तुम मना लो। तो वृषपर्वा ने देवयानी को मनाया कि भाई बेटा तुम हमारी बेटी की सहेली हो तो भाई तुम राजी हो जाओ। कि ठीक है मैं राजी हो जाऊंगी, मैं जहां विवाह करूंगी वहीं शर्मिष्ठा मेरी दासी होकर के रहेगी। तो दासी होकर के रहने के लिए कह दिया। तो देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ और ये शर्मिष्ठा उसकी दासी होकर गई। अब आप सुनो, देखो खास सुखदेव जी महाराज क्या पद देते हैं यहां, जिनके पास भागवत है ना बहुत गौर से देखना वहां। तो देवयानी की दासी बनकर शर्मिष्ठा गई वहां, वहां गई तो वहां उसने जाकर अपने पति से भी कह दिया कि देखो पतिदेव शर्मिष्ठा मेरी दासी है, दासी दासी की जगह ही रहेगी मैं रानी हूं तो मैं रानी की जगह मैं ही रहूंगी, आपकी दृष्टि किसी प्रकार से शर्मिष्ठा पर पत्नी दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। पहले ही कह दिया कि ठीक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवयानी की ये मांग उचित नहीं थी। स्पष्ट साफ शब्दों में तो नहीं कहा, स्पष्ट साफ शब्दों में नहीं कहा, पर एक कह भी दिया क्या कि तमेव वव्रे रहसी सख्या पतिमृतौ सती। शर्मिष्ठा परम सती थी, इसलिए राजा ने शर्मिष्ठा को स्वीकार कर लिया और शर्मिष्ठा से तीन बेटा पैदा हुए और देवयानी के दो बेटा पैदा हुए। अब बताओ यदि देवयानी की बात सही होती तो सती शब्द का प्रयोग नहीं होता। शर्मिष्ठा के लिए सती शब्द का प्रयोग किया है तो ये एक बहुत ही सोच समझ करके सुखदेव जी ने शब्द दिया कि इसमें शर्मिष्ठा की कोई गलती नहीं है। राजा ने यदि उसको स्वीकार किया है तो न तो राजा की गलती न शर्मिष्ठा की गलती है, क्योंकि सख्या पति रितव सती, उसने उसको स्वीकार किया है। इसलिए स्त्रियों को अपनी डाह के कारण से, कभी सौत के डाह के कारण से कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की जिंदगी पूरी खराब हो जाए। ऐसी बात ध्यान में रखा, धर्मम आगतावेक्ष धर्मवित। इस प्रकार से सब बातें उसने जान जान करके, धर्म की बात जान करके राजा ने की है, शर्मिष्ठा को स्वीकार किया है। और जब देवयानी को पता चला कि मेरे दो संतान और शर्मिष्ठा के तीन संतान हुई है तो देवयानी अपने पति के पास चली गई, अपने पिता के पास, सॉरी पिता के पास चली गई और पिताजी को जाकर के कहा कि देखिए आपने आपने जो कहा था कि भाई जो है तुम देवयानी के पास ही रहोगी और किसी के पास जाती तुम्हारी तो जवानी खत्म हो जाएगी, ऐसे मेरे पति को दिया है साहब, तो साहब वो तो अब समय आ गया, उसने तो शर्मिष्ठा को स्वीकार किया। तो ययाति ने जाकर के शुक्राचार्य से निवेदन किया कि महाराज अब मैंने स्वीकार किया, कोई ऐसी गलती तो नहीं मालूम दी। तो शुक्राचार्य ने कहा कि जो तुमको जवानी दे देगा उसकी जवानी आ जाएगी, नहीं तो भाई तुम तो ऐसे ही रहोगे। तो अपने सब बेटों के पास गया, देवयानी के दोनों बेटा यदु और तुर्वसु, तो कहे उनसे, उन्होंने कहा हम तो हमारी जवानी नहीं देंगे। शर्मिष्ठा के तीन बेटा द्रुयु अनु और पुरु, इन तीनों से कहा, उनमें एक पुरु ने कहा कि महाराज मेरी जवानी मैं आपको देता हूं, पिता माता मांगे और बेटा ना कर दे, इससे बढ़कर तो पिता के लिए शर्म की बात, पुत्र के लिए शर्म की क्या बात होगी, पिता मांग रहा है पिता, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। फिर जाकर के वो पुरु रवा तो उबने, ये पुरु तो हो गया बुढ़ा और ये हो गए जवान। ययाति जवान होते कई वर्ष तक रहे वो ऐसे। अंत में उन्होंने विचार किया कि अरे संसार के जो भोग पदार्थ है, ये भोग पदार्थ तो भाई ऐसे ही भोगे जाएंगे, ऐसे ही समय निकलता जाएगा, भोगों के भोगने से तो मनुष्य इन भोगों के अंदर ज्यादा फंसता चला जाता है। यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रिय है न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। जिसके मन में विषयों की वासना भरी पड़ी है उस आदमी को विषय मिलते रहेंगे तो वो वासना बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जिस प्रकार से घी की स्वाति स्वाति बूंदे अग्नि में डालते जाएंगे तो वो अग्नि बढ़ती जाएगी, ऐसे ही ये भोगों की इच्छा तो भोगने से बढ़ती चली जाएगी। ये हमने अपने पुत्र के साथ क्या काम किया, अच्छा नहीं किया, पुत्र की जवानी हमने ले ली और लेकर के केवल हमने भोगने के लिए किया ऐसा। तो दोनों के मन में विचार आया, उन्होंने अपनी जवानी वापिस जो है बच्चे को दे दी और स्वयं अपने जंगल में जाकर खूब भगवान का भजन करने लगे। इसी पुरु के वंश में देखो दुष्यंत नाम का एक कैसा राजा हुआ, उसने शकुंतला नाम की कण्व ऋषि की पालिता पुत्री को देखा, पालिता पुत्री तो उसको देखा और उसका मन गया तो कहा कि मेरा मन इस लड़की में जा कैसे सकता है, मैं हूं क्षत्रिय और ये है ब्राह्मण की बेटी, जा तो नहीं सकता, मेरे मन पर मेरे को पूरा विश्वास है। देखो उनको अपने मन पर विश्वास होता था, इसलिए न पौर्वाणाम अधर्मे रमते क्वचित, पूर्व वंश के लोगों का अधर्म में मन कभी जा नहीं सकता है। उन्होंने पूछा कि हे शकुंतले तुम कौन हो? कि मैं कण्व की बेटी नहीं हूं, विश्वामित्र की कन्या हूं और कण्व के द्वारा तो केवल मेरा पालन हुआ है। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो मेनका के गर्भ से मेरी उत्पत्ति हुई है। जंगल में एक छोटी सी शिशु को देखकर कण्व ऋषि ने मुझे पाला पोसा है, इसलिए मैं क्षत्राणी हूं। आपका मेरे से संबंध है ये न्यायोचित है, तो गांधर्व दृष्टि से उसे स्वीकार किया। ध्यान देना, उस शकुंतला ने ये बात कण्व ऋषि को बता दी, कण्व ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। और फिर कण्व ऋषि ने कहा कि तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो बेटे को लेकर के तुम अपने पति के पास जाना। तो उनके बेटा हुआ, वो बेटे को लेकर के वहां अंतपुर में गई कि महाराज मैं आपकी कन्या हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है। तो राजा मना कर दिया कि नहीं, तुमने सोचा होगा कि राजा कोई सुंदर स्त्री को देखकर मुग्ध हो जाएगा, बेटा बता दोगे, मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी तुमको नहीं देखा है, कैसे राजा थे। आकाशवाणी हुई कि शाबाश राजन, तेरी दृष्टि बड़ी पवित्र है, ये लड़का तेरा ही है, हमारे कहने से तुम मान लो और तुम ही इसके पिता हो और ये तुम्हारी स्त्री है। सब वो कण्व ऋषि वाली सब बातें बता दी, तब उसने स्वीकार किया। ये वो भरत राजा हुआ कि जो सिंह के मुंह के अंदर दांत गिन लेता था, एक 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 दांत। इस भरत के, अब ध्यान से सुनना, इस भरत के स्त्रियां थी तीन, उनके संतान हुई तो वो कोई कुरूप संतान हुई। ध्यान देना, कोई काणा है तो कोई खोड़ा है तो कोई कैसा है, कोई हाथ पतले तो पेट बड़ा है तो पेट पिचका, तो ऐसे कुरूप संतान हुई। तो उसने, उन स्त्रियों ने क्या किया, अपने बच्चे पैदा उनको मार दिया। मारने पर इस भरत को बड़ा दुख हुआ कि तुमने वंश को खत्म कर दिया, चाहे कैसा भी लड़का था, प्रारब्ध से आया था, तुमने उसको खत्म कर दिया। तब जो उनको बहुत बुरा लगा, तो तस्यैवं वितते वंशे तदर्थम व्यजतः सुतम, तब उन्होंने मरुत स्तोम से भरद्वाज को बुला करके और स्तुति की, और फिर उनसे जो है लड़का पैदा हुआ, उसका नाम वितत रखा गया, वितत। उस वंश में आगे जाकर रंतिदेव नाम के राजा हुए, जिनके विषय में सभी को पता है। 48 दिन तक भोजन नहीं मिला और रंतिदेव राजा भूखे रहे। 48वें दिन उनको थोड़ा बहुत खाने के लिए मिला, तब जो वही उनके पास में, पहले तो एक ब्राह्मण आए, फिर एक चंडाल आया, फिर एक कुत्तों को लेकर के और आ गया, ऐसे करके खाने पीने की सारी सामग्री उनकी समाप्त हो गई। परंतु उनके मन पर असर पड़ा कि मैं खाता तो अकेला राजी होता और ये इतने लोग राजी हुए तो ये भी तो मेरे ही रूप है ना, ये इतने लोग प्रसन्न हुए वो तो मेरा ही रूप है। ये तो समझने के लिए कि इसका पेट अलग है, इसका पेट अलग है, इसका पेट अलग है, मेरा पेट अलग है, पेट सबका एक ही तो है, क्योंकि सबकी एक जैसी भूख होती है, एक जैसी तृप्ति होती है, हमारे तो सब प्राणियों के साथ एकता है। हम क्यों भूलते हैं कि दूसरे का दुख है वो हमारा ही दुख है और दूसरे का सुख है वो हमारा ही सुख है, क्यों भूलते हैं हम। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टार्धियुक्ताम पुनर्भवम वाम आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखा। महाराज हमको तो आप सब लोगों के मनों में बैठा दो, सारे संसार के दुखी आदमियों का सारा दुख आप मुझे अकेले को दे दो और सबको आप सुखी सुखी बना दो। महाराज सबका सुख है वही मेरा सुख है, और सबका दुख मिला के मुझे अकेले को दे दो, वो ठीक है, मैं भोग लूंगा बड़े आनंद के साथ। ऐसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही वहां पर प्रकट हो गए और रंतदेव भगवान के दिव्य धाम में चले गए। इस वंश में आगे जाकर हस्ती हुए जिससे हस्तिनापुर बसा और हस्तिनापुर बसे बड़े बड़े विचित्र विचित्र राजा हुए। बृहदत्थ नाम का एक राजा हुआ, उसके स्त्री के लड़का हुआ, उसके दो टुकड़े हुए, वो जरासंध के नाम से आगे जाकर के प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में देवापी हुए जो कलाप ग्राम में जाकर रहेंगे और चंद्रवंश की समाप्ति पर वो आकर के वापिस चंद्रवंश को चालू करेंगे। और इस वंश में देखो आगे जाकर के कैसे कैसे राजा लोग होंगे। चलते चलते देखो वेद व्यास जी महाराज के मंत्रों के द्वारा, शक्ति के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीन हुए। इस वंश को तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हो। धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए, सबसे बड़े दुर्योधन थे और एक उनकी कन्या थी दुशला, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। पांडु के यहाँ कुंती को जो वरदान मिला था, उस वरदान के अनुसार देवताओं से सांकल्पिक सृष्टि के रूप में धर्म से युधिष्ठिर पैदा हुए, वायु से भीमसेन पैदा हुए, इंद्र से अर्जुन पैदा हुए और अश्विनी कुमारों से माद्री के यहाँ नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। इन पांचों के द्रौपदी पत्नी थी। इसके अलावा भी इनके एक एक पत्नियां और भी थी जिनसे अलग अलग लड़का पैदा हुए थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य और भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव के श्रुतकर्मा नाम के लड़का पैदा हुए थे। युधिष्ठिर के पौरवी से देवक पैदा हुआ था, भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच पैदा हुआ था। ऐसे सब अलग अलग पैदा हुए इनके। और उनमें देखो अर्जुन के जो है सुभद्रा से उनके अभिमन्यु पैदा हुए, अभिमन्यु से आप पैदा हुए हो और ये आपके बेटा जन्मेजय वगैरह सब विराजमान, ये देखो आपके बाद पृथ्वी का यहाँ पर शासन करेंगे। और आप जो ये अभी कथा सुन रहे हो, इसी कथा को आगे जाकर शौनकादि ऋषियों को, जो कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार चलने वाले हैं, उनको ये सूत जी महाराज आगे जाकर कथा सुनाएंगे। इस वंश में बहुत मगध देश में बड़े बड़े राजा हुए। और अब जो अनु है, अनु माने पुरु का जो भाई था माने शर्मिष्ठा के जो संतान तीन हुई थी, अनु, द्रुयु और तुर्वसु। तुर्वसु से जो है कई और लड़के पैदा हुए, अनु से भी हुए और द्रुयु से भी हुए, परंतु यदु से ये यादव पैदा हुए। ये यादव बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए थे। इनमें यादवों के अंदर बड़े बड़े ऐसे सहस्रार्जुन वगैरह जो है ये योद्धा पैदा हुए, जो जिनके ऊपर दत्तात्रेय धरेर अंशात प्राप्त योग महागुण है, बहुत उनके अंदर शक्ति थी। इस जो है सहस्रार्जुन में जो है कितने, उसमें 1000 भुजाएं थी, 500 बाण एक साथ चलाता था, ये दत्तात्रेय जी की कृपा थी। ऐसे ऐसे इनके राजा हुए। इन राजाओं को कोई माधव बोलते हैं, कोई वृष्णि बोलते हैं, कोई यादव बोलते हैं, अलग अलग राजाओं के नाम से इनको ऐसे ऐसे पुकारा जाता है। इस वंश में आगे जाकर के ज्यामग नाम का एक राजा हुआ था, उसके कोई संतान नहीं थी, ध्यान देना। एक बार वो युद्ध के अंदर गया और वहां जाकर उसने भोज्या नाम की एक लड़की थी, उसको अपने रथ में ले आया जीत करके। तब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज जी आपने क्या किया, मेरी जगह आपने इसको बैठाया है? कि नहीं नहीं, तुम्हारी जगह नहीं बैठाया है, मेरे जो लड़का होगा उस लड़के की ये पत्नी होगी। तब कहा महाराज आपने तो कोई संतान है ही नहीं। है नहीं तो क्या हुआ, निश्चित रूप से संतान होगी, भविष्य की बात कही। और उसके संतान हुई और उसका नाम विदर्भ कहलाया, विदर्भ कहलाया। उस विदर्भ से फिर आगे और संतानें होती रही। ये जो है अपने वसुदेव वगैरह सब उन्हीं वंश में आगे हुए हैं। वसुदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ था, तब देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बच चुकी थी, इसलिए वसुदेव जी को आनक दुंदुभी के नाम से भी बोला जाता है। वसुदेव जी के और भी भाई थे, उनमें वसुदेव जी की जो पत्नियां थी वो शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी ये, और इसके अलावा भी पौरवी, रोहिणी, मदिरा, रोचना, इला, ये सब मिलाकर के 18 पत्नियां थी। 18 का नाम तो भागवत में पूरा नहीं मिलता है, पर संख्या मिलती है। इन 18 पत्नियों के हर पत्नी के संतानें थी। देखो रोहिणी के बलराम जी हुए, गद हुए, सारण हुए, दुर्मद हुए, विपल हुए, ध्रुव हुए, ये रोहिणी के हुए। और देवकी के कौन कौन हुए कि देवकी के वसुदेव जी, देवकी के कीर्तिमान हुए, सुसेन हुए, भद्रसेन हुए, ऋजु हुए, संवर्धन हुए और भद्र हुए और बलराम जी हुए, और 8वें में भगवान स्वयं हुए। अब देखो बलराम जी का 2 जगह नाम आ गया, रोहिणी का भी और देवकी का भी नाम आया। या कहते हैं कि जब ये भगवान अवतार लेते हैं तो ये क्यों आते हैं कि यदा यदे धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप मनः, धर्म का जब ह्रास होता है, पाप की जब वृद्धि होती है, तब भगवान अपने आप को ही यहाँ प्रकट करते हैं। वास्तव में कोई इनके जन्म का कारण नहीं बनता है, सब जीव कोई न कोई कारण लेकर के जन्म लेते हैं, पर हमारे भगवान किसी कारण से जन्म नहीं लेते। वे अपनी माया के बिना यहाँ नहीं आते, अपनी माया करने के लिए, लीला करने के लिए ही आते हैं। कितनी कितनी अक्षोहिणी सेनाओं का उन्होंने वध किया। यदि कृष्ण भगवान का अवतार नहीं होता तो हे परीक्षित, ये पृथ्वी है पापी पापियों से भर गई होती। शंकरसन जी की सहायता से, बलराम जी की सहायता से अपरिमेय कार्य करते हुए भगवान ने यहाँ कलयुग के सारे पापों को मानो अपनी लीलाओं से धो डाला हो। जो व्यक्ति एक बार भी उनकी लीलाओं को सुन लेता है, उसके हृदय में रहने वाली कर्म की वासना भी समाप्त हो जाती है। ऐसे भगवान की लीलाओं के सुनने का प्रभाव है। वे भगवान जब अपने सुंदर चितवन से देखते हैं, वे भगवान अपनी मधुर वाणी से बोलते हैं, वे भगवान अपनी मस्ती की चाल से चलते हैं, उस समय में सारे पृथ्वी के लोग, लुगाइया सब उन पर लट्टू हो जाया करती थी। कारण कि भगवान का प्रत्येक अंग है वो सौंदर्य को बरसाने वाला था। देखो उनके कानों में रहने वाला मकराकृति कुंडल उनके कपोलों को सुशोभित करने वाला था, और जब कभी कभी उनके कपोलों पर वो शोभा पड़ती और वो हंसते थे, फिर तो एक निराली शोभा होती थी। वे ब्रज की स्त्रियां भगवान को देख देख करके नया नया उत्सव, नया नया आनंद मनाती थी, और जब कभी नेत्र थोड़ी सी भी अपने स्वभाव से झपकी मार लेता तो उस समय में वो कुपित हो जाती थी। क्या भगवान ने लीला की है, अपने पिताजी के यहाँ जन्म लिया परंतु वे ब्रज में जाकर बड़े हुए और वहां उन्होंने जाकर के शत्रुओं को मारा, फिर उनका सैकड़ों के रूप में विवाह हुआ, बड़े बड़े यज्ञ किए उन्होंने, आत्मानमात्म निगमम प्रथयन जनेशु, और लोगों के अंदर अपने अनेक लीलाओं के रूप में अपने को प्रकट किया, पृथ्वी का भार हल्का कराया, कौरवों पांडवों के युद्ध के द्वारा बहुत बड़ा भार हल्का किया, और अंत में उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देकर संसार को अज्ञान के भार से भी मुक्त किया, और फिर भगवान अपने धाम में चले गए। राजा ने कहा, महाराज आपने बड़ा सुंदर ये सूर्यवंश और चंद्रवंश सुनाया है। मैं तो देखो पहले चंद्रवंश का नाम लेते हैं, सोम सूर्य यो, नाम तो लेना चाहिए पहले सूर्यवंश का, लेकिन बोलते क्या है कि आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश को सुनाया, पहले चंद्रवंश क्यों दिया? तो देखो यहाँ इस जब राजा बोलते हैं ना तो निकट में वंश तो चंद्रवंश ही था, चंद्रवंश और सूर्यवंश यो, पहले सूर्यवंश सुनाया पर निकटता में तो चंद्रवंश ही सुना रहे हैं ना, चंद्रवंश, और दूसरा थोड़ा अपने चंद्रवंश में आप हम दोनों ही जन्म लिए हुए हैं। और भगवान विष्णु है वो अपने अंश के रूप में यहाँ पर अवतार लिए कृष्ण के रूप में, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हमको विस्तार के साथ सुनाओ। निवृत्त तरसई रूप गीय मानात बबौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात। जिनकी तृष्णा समाप्त हो चुकी होती है, ऐसे आप जैसे महापुरुष जब संसार के कल्याण के लिए ऐसी सुंदर कथा सुनाते हैं तो संसार के रोग से पीड़ित रहने वाले लोगों के लिए औषधि का काम करती है, कानों को प्रिय लगती है, मन को प्रिय लगती है। भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते किसका मन उपराम होता है। कोई बड़ा भारी कोई जीव हत्यारा हो उसकी तो हम कह नहीं सकते हैं, बाकी इस लीला से किसी का भी आज तक सुनते सुनते मन अघाता नहीं है। हमारे दादा लोगों ने देखो पितामह भीष्म आदि से बड़ा भारी ये कौरव सैन्य सागर पार किया था, गोखुर के समान उसको पार कर लिया, केवल ये कृष्ण की कृपा थी। और स्वयं मेरे पर कैसी कृपा हुई, मुझ पर कैसी कृपा हुई कि मैं तो अश्वत्थामा के शस्त्र से मरने ही वाला था, परंतु भगवान ने मुझे सुदर्शन चक्र लेकर बचा लिया। क्यों? मेरी माँ उनकी शरण में चली गई, माँ शरण में गई, मैं बच गया। उन भगवान की आप हमको विचित्र विचित्र लीलाओं को सुनाओ। और महाराज एक बड़ा आश्चर्य है, आपने बलराम जी के लिए कहा कि वो रोहिणी के बेटा है, एक तरफ आप कहते हैं वो देवकी के बेटा है। ये बात समझ में नहीं आई कि जो बलराम जी रोहिणी के और देवकी के दो माताओं के एक शरीर से कैसे बेटा हो सकते हैं। मरने के बाद तो दूसरी माँ के यहाँ जन्म ले सकते हैं, पर एक ही शरीर से दो माताओं के यहाँ कैसे जन्म लिए। और दूसरी बात ये भी बताओ कि वो पिताजी को छोड़कर के ब्रज में गए, क्या क्या वहां पर ब्रज में काम किया। देखो ये परीक्षित जी है ना, पूरा कृष्ण चरित्र सुन के आए हैं। किन के मुख से सुन के आए? सुखदेव जी के मुख से सुन के आए। कहाँ सुन के आए? दो बार सुन के आए, दो बार। एक बार तो ब्रह्मा और नारद के संवाद में, दूसरे स्कंद में सुन के आए, सातवें अध्याय में, देख लेना आप, सबसे लंबा कृष्ण चरित्र है। और एक विदुर मैत्रेय संवाद के अंदर कृष्ण चरित्र पूरा चलता है, परंतु नहीं उद्धव और विदुर संवाद में, मैत्रेय ने उद्धव और विदुर संवाद में पूरा कृष्ण चरित्र ही चलता है, वहां भी परीक्षित ने सुना, परंतु वहां ये प्रश्न नहीं किया लीला संबंधी, यहां क्यों किया। देखो भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना समझना मामूली बात नहीं है, वो एक एक क्रम से ऐसे क्रम भागवत को ऐसा गुथा है वो, कि पहले स्कंद का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, जो विषय उस विषय का प्रतिपादन करते करते कथा सुनाते हैं। और ये प्रश्न इसलिए नहीं किया, कृष्ण चरित्र सुनना कोई मामूली बात नहीं है, कृष्ण चरित्र सुनने के लिए कैसा हृदय चाहिए हो, उसके लिए तीसरा स्कंद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां, इन सब का वर्ण विषय जिसके हृदय में उतर जाता है वो दसम स्कंद में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। तो वो पूछा कि महाराज उन्होंने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की और अपने मामा का फिर कैसे उद्धार किया, कंस का कैसे उद्धार किया। वास्तव में वो मनुष्य शरीर में लीला करने के लिए तो आए, पर कार्य उनके अतिमर्त्य थे, उनके कितनी कितनी पत्नियां हुई। देखो पहले बता के आए, फिर ये कितनी पत्नियां हुई, इसका अर्थ क्या है कि ये 16108 क्या चीज है, ये तो आप वहां सुनेंगे तब पता चलेगा। और एतत अन्यच्च, इसके अलावा भी आप हमको कुछ बताइए, एतत अन्यच्च, अलग में क्या है। ओहो अलग में देखना, जब बोलते बोलते हमारे सुखदेव जी महाराज चुप हो जाएंगे, हो दो क्षण ऐसे आएंगे, यहां दो क्षण नहीं, दो कथाओं का समय, दो कथाओं में ऐसा समय आएगा हमारे सुखदेव जी बोलते बोलते चुप हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। उन भाव विभोर वाली कथाएं, उनमें एतद अन्यच्च तत् सर्वम, एतद अन्यच्च है, चकार लिया है, चकार चकार अर्थ है दो बात बता, ये भी सुनाओ और अन्य भी कुछ सुनाओ आप, तो मैंने पूछा है सब आप सुनाओ। तो आप मेरे भूख प्यास की कोई चिंता मत करना, आपके मुखार बिंद से निकलने वाला अमृत ये साक्षात भगवान की कथा नहीं, अमृत है, भगवान ही है ये, इसलिए इस कथा को विस्तार से सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे उनके प्रश्न को सुन करके बड़े मस्त हो गए हमारे सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म को सुनाएंगे। तो भाई अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ वो सुनाएंगे ना, वो कथा अब अपने को भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले हम आपको सुनाएंगे। आज जो है उस कथा को इसलिए सुनाएंगे कि जन्मोत्सव यही हो, जन्म का प्राकट्य हो रहा है रात्रि में, तो रात्रि में प्राकट्य के साथ इस कथा को सुनाएंगे। और कल 12:15 बजे के लगभग यहाँ अपने लोग नंदोत्सव के साथ में जो है कथा का आगे का आनंद लेंगे। अभी की कथा को ये मध्यम विश्राम दे रहे हैं, अभी हम मध्यम विश्राम दे रहे हैं, इसीलिए अभी कथा की आरती भी नहीं करेंगे। जो समाप्ति की आरती है वो अभी नहीं करेंगे, समाप्ति की आरती हम बाद में करेंगे। शाम को जब ये रात्रि में भगवान का साक्षात प्रकट हो जाए, प्राकट्य हो जाएगा कथा के साथ, तब हम अपना आरती करेंगे। अभी तो केवल कीर्तन करके जयकार करके इस कथा को मध्यम विश्राम के रूप में यहाँ पर विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव।
सियावर रामचंद्र की
जय।
भोर मुकुटवंत वाले की
जय।
श्री वेद व्यास जी महाराज की
जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की
जय।
श्री परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
रात्रि में कथा